السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم بیک ٹو اندر اپیسوڈ آف دل کی بات. یہ پارٹ ٹو ہے ایک ویڈیو کمپائلیشن کا, تو اگر آپ نے اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہاں پر کہیں پر وہ آ رہی ہے, وہ ضرور دیکھ لیں, کیونکہ آپ کو اس ویڈیو کی 1.5 روپے کی سمجھ نہیں آئے گی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہے. اس میں پورا کانٹیکسٹ ہے, بیک گراؤنڈ ہے, لمبی ویڈیو ہے. اگر آپ اس ویڈیو پہ پہنچے ہیں, اس ویڈیو میں بہت ساری کانٹروورشل باتیں ہوں گی, تو اگر آپ ان کانٹروورشل باتوں کو سن کے ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں لینا چاہتے تو براہ کرم پہلے وہ والی ویڈیو دیکھ لیں. اگر آپ نے آڈیو دیکھ لی ہے تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں ایک بڑے سادہ پاکستانی گھرانے میں پیدا ہوا, اور اسی کے اندر میری ایک ایسٹرن ویلیوز کے ساتھ اپ برنگنگ ہوئی. پھر میرا ایک ٹرانزیشن ہوا جس میں 5 سال میں تقریباً پرائیویٹ اسکول گیا, اور بہت ساری چیزیں ہوئیں, انٹرنیٹ کا ایکسیس, ہالی ووڈ اور امیریکن پاپ کلچر, اور ساتھ ہی کوئنسائڈنگ ود دا وار آن ٹیرر. میں آہستہ آہستہ ایوالو ہو کے ایک سارٹ آف ویسٹرنائزڈ مائنڈ سیٹ والا انڈیویجول بن چکا تھا. اینڈ بائی 2010 میرا ایک چھوٹا سا فلٹر ببل تھا جس میں میرے ارد گرد کے بھی اسی طرح کے ویسٹرنائزڈ اے لیولس کے پرائیویٹ اسکول کے بچے میرے دوست یار تھے. حالانکہ مجھے لگتا تھا کہ اس وقت مجھے پاکستان کے بارے میں بہت پتا ہے, اور بلکہ پاکستانیوں سے, میجورٹی آف پاکستانیوں سے زیادہ مجھے پتا ہے, پر انفارچونیٹلی مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا, اور میں ایک بہت چھوٹی سی اپنی ایک دنیا میں تھا, اور اس ویڈیو کی اسٹوری وہاں سے شروع ہوتی ہے. اب نارملی جو ہم پرائیویٹ اسکول کے بچے گریجویٹ کرتے ہیں, بیکن ہاؤس میں جیسے ہم تھے, تو زیادہ تر لوگوں کے ٹاپ آف مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یار ہم نے اگر پاکستان میں یونیورسٹی جانا ہے تو ہم نے لمز جانا ہے, آئی بی اے جانا ہے, چلو جی آئی کے چلے جائیں گے, نسٹ چلے جائیں گے. بزنس اسکولس بہت سارے ایسے ہیں جس میں چلے جاتے ہیں لیولس کے بچے, آرٹ اسکولس میں چلے جاتے ہیں, این سی اے, انڈس ویلی, بی این یو, میڈیکل اسکولس میں بہت زیادہ جاتے ہیں, اے کے یو, شفا, ایل ایم ڈی سی وغیرہ وغیرہ. اور ان اسکولس کا جب آپ بیچ کا ریشو دیکھتے ہیں تو آپ کو میجورٹی اس میں اے لیولس کے بچے نظر آتے ہیں. اب آپ کو میں نے پہلے آلریڈی بتایا کہ او لیولز اے لیولز میں آپ کا ایک فلٹر ببل ہے جس میں آپ انہیرنٹلی ویسٹرنائزڈ ہیں, انہیرنٹلی ڈسکنیکٹڈ ہیں فرام پاکستانی کلچر. وہی فلٹر ببل آپ کا ایک اسٹیپ آگے جاتا ہے اور یونیورسٹی میں بھی آپ کو ملتا ہے. اگین اس میں بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے, وہ اپنے حساب سے بیسٹ انسٹیٹیوشن میں جا رہا ہے, وہ ایسے کلچر میں جا رہا ہے جس کو وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے, جو کہ اس کے لیے اتنا ایلین نہیں ہے. اس کی کوئی غلط انٹینشن نہیں ہے کہ وہ ان یونیورسٹیز میں جا رہا ہے, لیکن آبویسلی ہر انسان جس انوائرمنٹ میں کمفرٹیبل ہوتا ہے اسی انوائرمنٹ میں جانا چاہتا ہے. اور ان یونیورسٹیز میں اور ان پروگرامس میں جہاں پہ میجورٹی بچے اے لیول پرائیویٹ اسکول سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پہ چونکہ معاشرہ جو ہے ہمیشہ کنورج کرتا ہے ٹورڈز ایلیٹسٹ تھاٹ, وہ جو ایلیٹسٹ تھاٹ ہے یا میجورٹیرین تھاٹ ہے اس کو وہ کول سمجھتا ہے. تو وہاں پہ اگر کوئی ایف ایس سی والا بھی آیا ہوا ہوتا ہے تو وہ جنرلی مور آفن دین ناٹ میجورٹیرین ویو پوائنٹ کی طرف ہی کنورج کرے گا, اور وہ ویو پوائنٹ نیسیسری نہیں ہے کہ غلط ہو یا نیگیٹو ہو یا برا ہو. بس میں ایک جنرل آبزرویشن دے رہا ہوں کہ ہیومینٹیز کے اسکولس جو ہوتے ہیں, بزنس کے اسکولس جو ہوتے ہیں, آرٹ کے اسکولس جو ہوتے ہیں, ایون پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہوتے ہیں, جہاں پہ میجورٹی پرائیویٹ اسکول کے بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پہ ان بچوں کے سوچنے سمجھنے کا اسٹائل مور آفن دین ناٹ ایک ہی سمت میں ہوتا ہے. اور یہ ایسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اوریجنل تھنکنگ کے لیے نا, اوریجنل تھنکنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ ڈائیورسٹی کو پہلے اسٹڈی کریں, انڈرسٹینڈ کریں, اور پھر آپ ایک یونیک سوچ کے ساتھ چیزوں کو اپروچ کریں. ویئر ایز سنگل ڈائمینشن تھاٹ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد سب ایک ہی بات سوچتے ہیں, ایک ہی بات پہ اگری کرتے ہیں, کوئی اگر ڈسینٹ آتا بھی ہے اچھا یا برا تو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں یار یہ انکول ہے, یہ پینڈا ہے, یار یہ جاہل ہے, یار اس کو پتہ نہیں ہے, اس طرح کی باتیں کر کے آپ اس کو دبا دیتے ہیں. حالانکہ کاؤنٹر تھاٹس, کاؤنٹر آرگیومنٹس آر آلویز ویری ویری امپورٹنٹ اپنی انٹلیکچوئل اسٹیمولس کے لیے. اگین چاہے وہ باتیں صحیح ہوں چاہے وہ باتیں غلط ہوں, صرف اور صرف ڈسکورس کے لیے نا, جب آپ کو چیلنج کیا جاتا ہے تب آپ جا کے ایکچولی گرو کرتے ہیں, تب آپ ایکچولی جا کے اپنا دماغ کھولتے ہیں. خیر میرا بھی اوریجنل خواب یہی تھا کہ یار یا تو میں باہر چلا جاؤں, کیونکہ اب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم میرا بڑا شوق تھا کہ یار میں فوراً سے پیشتر باہر جاؤں اور امریکہ میں ایک جاب کروں, اور وہاں پہ ایک جو گین امریکن ڈریم ہے وہ میں پرسیو کروں. میرے بھائی آلریڈی کر چکے تھے, میرے ماموں کر چکے تھے, مجھے ایک جنرل آئیڈیا تھا کہ یار اچھا آئی ٹی یا ٹیک میں گھس جائیں گے, وہاں پہ جا کے جاب کریں گے, وہاں پہ کیا پروسیس ہوگا, گھر کس طرح لینا ہوگا, گاڑی کس طرح لینا ہوگی, کمفرٹیبل ایک سسٹم ہوگا اس میں گزارا کریں گے. اب باہر کی ایجوکیشن بڑی ایکسپینسو تھی, ٹو بی ویری آنسٹ, ہم نہیں افورڈ کر سکتے تھے. اسکالرشپ کے لیے جو گریڈ چاہیے تھے وہ میرے آئے نہیں تھے. اوریجنلی میں نے لمز میں اپلائی کیا, لمز میں میرا اکنامکس میں ہو گیا, کمپیوٹر سائنس میں نہیں ہوا, دل میرا کمپیوٹر سائنس کرنے کا تھا. تو میں نے ہیپ ہیزرڈلی ڈیسائڈ کیا کہ یار میں جا رہا ہوں فاسٹ, جہاں میرے سارے بھائی بھی گئے تھے, میرے کزنس بھی گئے تھے. مجھے سم واٹ گروئنگ اپ سمجھ تھی کہ یار فاسٹ ایک اچھا انسٹیٹیوٹ ہے, ہاؤ بیڈ کڈ اٹ بی. تو میرے اے لیولس کا ریزلٹ آیا, اس سے مجھے پتا لگا کہ یار میرا لمز میں تو نہیں ہو سکتا, اور میں نے ٹکٹ کٹایا فاسٹ کراچی میں, میرا ایڈمیشن ہو گیا, میں فاسٹ کراچی نکل گیا. فاسٹ کراچی کا جو کیمپس تھا وہ بھینس کالونی کے پاس تھا, ہائی وے پہ جا کے. وہاں پر کوئی 1-1.5 سال پہلے کوئی پولیٹیکل پرابلم ہوئی تھی, تو گاؤں والوں نے آ کے پورا کیمپس جلا دیا تھا. تو وہاں پہ آپ کے پاس کوئی کمپیوٹرز نہیں تھے پراپر, کوئی پروجیکٹرز نہیں تھے, بس صرف اور صرف وہ لٹرلی, میں مذاق نہیں کر رہا, 2010 کی بات ہے, پاکستان کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, اور اس کے اندر جو سلائڈس تھیں وہ ٹرانسپیرنٹ स्लाइड्स होती थी जो कि वो एक लाइट के ऊपर रख के दीवार पे प्रोजेक्ट कर रहे होते थे, क्योंकि उनके पास प्रोजेक्टर्स वगैरह कोई भी इक्विपमेंट नहीं थी। अब अगेन मैं आया हूँ इस्लामाबाद से, एक प्राइवेट स्कूल से, मेरे दोस्त लम्स में हैं, मैं लम्स का एक्सपीरियंस भी देख रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त बाहर पढ़ने गए हैं, मैं उनका एक्सपीरियंस भी देख रहा हूँ। मैं मीनवाइल कराची में आया हुआ हूँ। यूनिवर्सिटी इटसेल्फ जो है वो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जो ओवरऑल इकोसिस्टम है वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट चलो वो मैं फिर भी गुजार लेता, वो इतना प्रॉब्लम नहीं था। कराची इटसेल्फ का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं फेडरल बी एरिया में अपने मामू के साथ रह रहा था, मैं बाहर वॉक करके जाता था, वहाँ पे रेंजर्स की गाड़ी खड़ी होती थी, मैं उनको देखता था कि यार चलो ये तो हमारे मुहाफिज हैं, वो मुझे ऐसे देखते थे कि यार मैं टेररिस्ट हूँ, ये हमने कभी इस्लामाबाद में एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की कि यार कराची की तो डायनेमिक ही फ़र्क है, वहाँ पर द लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी दैट यू फील इज समथिंग जो कि नॉर्थ पाकिस्तान के लोगों को आइडिया ही नहीं है। फिर मुझे चलती बस से मल्टीपल टाइम्स बाहर फेंक दिया। एक दफ़ा तो मुझे चलती बस से उसने ऐसे चौराहे पे फेंका कि मैं उलटता पलटता जा रहा था, मुझे गाड़ी ने रोन देना था, वो तो मैंने अपने हाथों को लिटरली रोड पे घसीटा है ताकि मैं रुकूं और सारा खूनम खून हो गया वो, लेकिन वो बंदा बस वाला जो है वो हंसता खेलता चला गया आगे। उसने कहा भाई तेरा स्टॉप आ गया, तू उतर यहाँ से। वो बस रुकती नहीं है, वो बस थोड़ी सी स्लो होती है, फिर वो आपको बाहर फेंकती है, आगे निकल जाती है। फिर एक दफ़ा रात को 12 बजे मुझे क्लिफ्टन पे कुत्ते पड़ गए मेरे पीछे। मतलब आई मीन मेरा यू नो वो मर्फीज़ लॉ होता है ना कि व्हेन समथिंग हैज़ टू गो बैड तो एवरीथिंग गोज़ बैड। और एक वो नहीं होता कि जिस दोस्त ने कभी चीटिंग नहीं की होती तो उसके साथ हमेशा वो पकड़ा जाता है। तो मैं चूंकि बिल्कुल ही मासूम बर्गर टाइप था तो मेरे साथ हर किस्म की जो बुरी हो सकती थी कराची में वो हुई, टू दी एक्सटेंड के 2.5 महीने गुजारने के बाद मैंने कहा यार मेरी हो गई है बस। मैंने अपने बैग्स पैक किए और मैं फ्लाई करके वापस इस्लामाबाद आ गया। मैंने कहा यार अगले साल देखी जाएगी, इस साल तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फुल डिप्रेस्ड डिजेक्टेड के यार ईयर ऑफ लेना पड़ेगा, सारे दोस्त यार जो है वो यूनिवर्सिटियों में, मैं कितना बड़ा लूजर हूँ। बट यू नो आई लेफ्ट दैट। इस्लामाबाद आए तो इस्लामाबाद में हमने एक तो अपना फोटोग्राफी पेज और डिजिटल मीडिया का आगाज़ किया प्रॉपर, जो ओरिजिनली मैंने लॉल स्टूडियोज़ बनाया था, जो मेरा कंटेंट की जर्नी है वो मेरे उस साल में बेसिकली शुरू हुई। मीनवाइल मैंने फास्ट इस्लामाबाद का फिर से टेस्ट दिया और इस बार मैं पास हो गया। अब ये जो मेरी जर्नी है ना यूनिवर्सिटी की, और ना सिर्फ यूनिवर्सिटी की बट साथ साथ जो मेरी सोशल मीडिया की जर्नी चल रही थी, जो मेरी पहली ट्रांजिशन थी वो मेरी लार्जली मटीरियलिस्टिक इन नेचर थी। उसमें मैं मटीरियल चीज़ों के पीछे जा रहा था, मुझे यू नो साफ सुथरी बिल्डिंग्स, अच्छी कंफर्टेबल एनवायरमेंट्स, इस तरह की चीज़ें एंटाइस कर रही थी। वेयर एज दिस जर्नी वॉज अलॉट मोर फिलोसॉफिकल। जिस तरह जब मैं कराची गया तो कराची में, चाहे मैं अगेन बर्गर हूं, मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया हो, मैं उस टाइम पे जितना भी मुझे चढ़ चढ़ी हो कि यार ये क्या है, ये तो बड़ा अनकंफर्टेबल है, मैंने तो ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मैंने बहुत सीखा उससे। मैंने डाइवर्सिटी देखी पाकिस्तान की, मैंने इनसिक्योरिटी समझी कराची वालों की। वो जो इंसिडेंट्स थे ना वो मेरे लिए कोई बुरी वो नहीं है कि यार कराची में बड़े बुरे एक्सपीरियंस थे और यू नो ट्रॉमा है। इनफैक्ट उससे मुझे बहुत सारे लोगों की इनसिक्योरिटी को समझने का, बहुत सारे लोगों की जो ट्रॉमाज हैं उनको समझने का मौका मिला। इसी तरीके से इस्लामाबाद में जब फाइनली मैंने फास्ट इस्लामाबाद में एडमिशन लिया, तो मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिवर्सिटीज़, खासकर जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं, वो जिन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं उनका रेशो फ़र्क होता है। फास्ट में रेशो अपोजिट था, यहाँ पे 97% जो थे वो FSC के बच्चे थे, 2-3% ए लेवल्स के बच्चे थे, प्लस वो जो 97% थे उसमें से मेजोरिटी पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे। बहावलपुर, DI खान, फैसलाबाद, मुल्तान, मतलब मेरे सम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स जो मेरे फास्ट के बने वो डिफरेंट डिफरेंट शहरों के हैं, डेरा इस्माइल खान के हैं, बहावलपुर के हैं, फैसलाबाद के हैं। एंड स्पेशली फास्ट के अंदर पूरा बैच था OSPNs का, जो कि बेसिकली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे लोग आए हुए थे पूरे पाकिस्तान से, मतलब सिंध से, बलूचिस्तान से, और ये इनहेरेंटली मिडिल क्लास पाकिस्तानी, मेहनतकश पाकिस्तानी, जो कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपने आप को एजुकेट करने आए हुए थे और अपनी जिंदगियां बेहतर करने आए हुए थे। अब इस पॉइंट पे मेरा जो स्कोप था, जो मेरा इंडिविजुअल पर्सनल स्कोप था, वो बहुत ज़्यादा बदला। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, हम एक घर में रह रहे थे, उसमें हमारा केस चल रहा था, हम एक छोटे से दड़बे नुमा बेसमेंट में रह रहे थे। 10 साल बचपन मेरा उसमें गुजरा, पैसे होते नहीं थे, कैश नहीं होता था, क्योंकि बड़े भाई थे बहुत सारे, उनकी यूनिवर्सिटियों की फीस जानी है तो ये होना है वो होना है। फिर घर जब हमें मिला फाइनली तो कोर्ट ने उसके ऊपर एक पेनल्टी लगा दी, तो वाले साहब ने सारी सेविंग्स जो है वो सारी उसमें देनी पड़ी, तो कैश इन हैंड हमारे पास नहीं होता था। तो मेरे दिमाग में, मैं एक बड़े मिडिल क्लास लाइफस्टाइल में था, क्योंकि मिडिल क्लास का यही होता है, एक कोर्ट का डिसीजन जो है वो बेघर कर सकता है, सड़क पे ला सकता है आपको, आपके पास फालतू का कैश नहीं है, वाले साहब की अगर नौकरी चली जाए तो आपके पास तो अगले महीने के खर्चे के पैसे ही नहीं है। तो मेरा स्कोप जो था ना वो ये था कि यार मैं शायद मिडिल क्लास हूँ, और चूंकि एक्सपोजर जो था वो उस फिल्टर बबल में था, तो प्राइवेट स्कूल में मर्सिडीज़ वाले बच्चे भी थे, वहाँ पे रेंज रोवर वाले बच्चे भी थे, तो हम उनको देखते थे, हम कहते थे यार ये देखो ये अशराफियाँ हैं, और हम तो बेचारे गरीब लोग हैं, हमारे पास लेटेस्ट मोबाइल नहीं होता, हमारे पास यू नो कैश इन हैंड नहीं होता। जब मैं फास्ट गया तो फास्ट में मुझे डाइवर्सिटी मिली, और जब मुझे डाइवर्सिटी मिली तो मुझे ट्रूली पता लगा कि यार एक्चुअली मिडिल क्लास इस मुल्क का कौन है। हमारे पास चलो कैश नहीं होगा, लेकिन हमारे पास प्रॉक्सिमिटी है, हमारे पास कनेक्शंस हैं, हमारे पास इस्लामाबाद में रहने की वजह से हमारे दोस्त यार जो हैं उनके वालिद साहब कौन कौन हैं, क्या क्या हैं। तो मुझे अपनी प्रिविलेज का बड़ा क्लियर एहसास हुआ, और मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि ये लोग यूनिवर्सिटी में मुझे मिले, इनके बहुत डिफरेंट ख्याल थे, जो कि अगर ऑनलाइन अगर ये लोग अपने ख्याल का इजहार कर रहे होते मैं कहता यार ये कौन जाहिल लोग हैं, लेकिन चूंकि मेरी इनसे दोस्तियाँ हुई, मेरा ब्रदरहुड एक बना इनके साथ, तो जब इनका डिफरेंट थॉट आती थी ना तो मैं उनको इमीडिएटली जज नहीं करता था कि यार ये क्या अजीब बात कर रहा है, या ये तो शॉविनिस्ट है, या ये सेक्सिस्ट है, या ये कंजर्वेटिव है, एक्सट्रीमिस्ट है। मैं एक्चुअली समझने की कोशिश करता था कि यार एक रैशनल आदमी है, लॉजिकल बातें करता है, मेरे साथ हुल्लड़बाजी करता है, शुगल मेला लगाता है, अगर ये डिफरेंट बात कर रहा है तो वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम। एंड सो वहां पर मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खुला, और मैंने खासकर देखा जो मेरे अपने दोस्त जो कि प्राइवेट स्कूल से निकल के फिर लम्स गए या बाहर की यूनिवर्सिटियों में गए या जनरली ए लेवल सराउंडेड रहे, उन लोगों को ये वाला एक्सपोजर नहीं मिला और उन लोगों की बातें आज तक वैसी ही हैं। बहुत सारे उनके अभी तक वही स्टीरियोटाइप्स हैं, वो अभी तक उसी बबल उसी फ्रेमवर्क में चल रहे हैं जिसमें उनको ये रियलाइज ही नहीं हो रहा कि उनमें और मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी जो डिफरेंट बात सोच रहा है या कह रहा है वो जहालत नहीं है, वो इलिटरेसी नहीं है, वो उसकी रियलिटी है। और उस रियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो एक डिफरेंट बात कर रहा है तो आपको भी उसकी बात समझनी है और फिर एक दरमियान का रास्ता निकालना है। नंदलेस फास्ट में मेरी एक पर्सनल अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा हम्बल हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा जो है ज़मीन पे आ रहा था। सिमल्टेनियसली ऑनलाइन चूँकि मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट बना रहा था तो वो वायरल भी होना शुरू हो गया, उस पर बहुत सारे लोग एकदम से आना शुरू हो गए, फॉलो करना शुरू हो गए, और उनका चूँकि वो डिजिटल की खूबसूरती है, टू वे कम्युनिकेशन है, तो उनकी थॉट्स, उनकी सोच, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी मुझे मिलना शुरू हो गई, और मुझे एक्सेस मिला लोगों को फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, फ्रॉम ऑल डिफरेंट डेमोग्राफिक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अगर मैं लेट्स से अपर मिडिल क्लास था तो मुझे मिडिल क्लास मिल रहा था, मुझे अपर मिडिल क्लास होते हुए मुझे अपर क्लास का भी एक्सेस मिल रहा था, मुझे डाइवर्सिटी मिल रही थी, जिसकी वजह से सडनली आई वाज एबल टू ओपन अप माय माइंड इवन फर्दर। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा मैं समझाऊं आपको कि वो जो ट्रांजिशन था वो था क्या पर्टिकुलरली इंटरनेट का। देखिए 2013 से पहले ना रफली कोई 6 to 7 million पाकिस्तानी ब्रॉडबैंड हाई स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे, दैट वॉज लाइक 2 to 3% ऑफ द पॉपुलेशन एट द टाइम। ये अर्बन सेंटर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के लोग इस्तेमाल कर रहे थे, और अगेन आप देख लें 2-3% पाकिस्तानी अगर इस्तेमाल कर रहे थे, और अगर आप उसमें से हैं जो 2013 से पहले इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे तो आप खुद सोचें कि आप कितनी छोटी पॉपुलेशन थे, कितनी छोटी एक फ्रेंच थे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अलावा अगर क्वेटा कैंट है या पिशावर कैंट है तो वहां पे स्लो स्पीड का इंटरनेट वगैरह कनेक्टिविटी थी, बट मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को बाय एंड लार्ज इंटरनेट एक्सेस नहीं था। एंड सो इस टाइम के ऊपर जो इंटरनेट के ऊपर लोग थे ना वो लार्जली, चाहे वो अगेन मेरी तरह जितने भूले भटके हों, वो अपने फिल्टर बबल में जो भी अपने आप को समझें, बट एक्चुअली देवर दी अपर मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी, देवर द वंस हु वर वेल कनेक्टेड इनफ टू नो दैट इंटरनेट इज अ थिंग, कंप्यूटर इज अ थिंग, इस चीज़ को हमने अपनाना है, यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है। एंड सो ऑब्वियसली उनका एक सर्टन एजुकेशन लेवल था, उनकी एक सर्टन प्रिविलेज थी, उनकी एक सर्टन अपब्रिंगिंग थी, वो क्राउड प्रेवलेंट था ऑन द इंटरनेट। सो 2013 से पहले का इंटरनेट वही था, बबली, नाइस, वेरी लॉजिकल, वेरी फनी, कोई खप्पे नहीं होती थी, कोई लड़ाइयाँ नहीं होती थी, कोई लोग किसी को कैंसिल नहीं कर रहे थे। 2013 के बाद पाकिस्तान में एक डिजिटल रेवोल्यूशन आई जब 3G और 4G के लाइसेंसेस बटे। पहला तो लाइसेंस बटना इज वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डील, बट मोर इंपॉर्टेंटली अब आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे नॉट विद लाइक 50,000 rupees का या 1,00,000 rupees का लैपटॉप, विच वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव डिवाइस फॉर एंट्री टू द इंटरनेट। अब आप 10,000 rupees के क्यू मोबाइल से बेसिकली इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते थे। सो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का जो पहला इंटरनेट एक्सपीरियंस था वो फोन के ऊपर था, जिसके ऊपर आपने फोन पे 3G लगाया, आपने उसी वक्त जो है ना एक फेसबुक का अकाउंट बनाया और आप एंटर हो गए। और इस टाइम से लेकर अगले 5 साल तक तकरीबन आप समझेंगे 30 to 40 million पाकिस्तानी, यानी कि पहले 6 million था और अब 40 million पाकिस्तानी नया इंटरनेट के ऊपर आया। और ये एक ऐसा पाकिस्तानी था जो कि हिस्टोरिकली हमने जो पाकिस्तान देखा था ना, जिसमें हमने आर्बिट्ररी दीवारें खींची हुई थी, जिसमें हमने एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था अफसर में और आम पाकिस्तानी में, जिसमें आप अगर उनसे मिलते भी थे आप सोचते थे कि अच्छा यार यू नो व्हाट हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, बट पावर डायनामिक ऐसा था कि आप ट्रूली इंटरैक्ट नहीं कर पाते थे, जिसमें वो बंदा अपनी लैक ऑफ पावर की वजह से, फियर की वजह से आपके मुंह पे आके अपने एक्चुअल ख्यालात का इजहार नहीं करता था, वो ख्यालात आपको ऑनलाइन नजर आना शुरू हो गए। और वहां पे हमने देखा कि ब्लॉग्स के ऊपर और कमेंट सेक्शंस में और इधर उधर हर तरफ आपको मास मार्केट पाकिस्तानी के ख्यालात इमर्ज होते हुए नजर आए। और उस पॉइंट पे मैंने अपने बहुत सारे हाई स्कूल के फ्रेंड्स को देखा जो कि अगेन ए लेवल्स वाले थे, जो कि कंफ्यूज थे कि यार ये पाकिस्तानियों क्या हो गए, कितने जाहिल लोग हैं ये, कितने इलिटरेट लोग हैं इनको, यू नो कितने सेक्सिस्ट लोग हैं ये, कितने कंजर्वेटिव लोग हैं, कितने एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। और उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि भाइयों आप भी ऐसे ही थे, आपको एक्सेस टू एजुकेशन थी, आपको एक्सपोजर मिला, आपको एक्सेस टू नॉलेज थी, तो आप بہت بہتر ہو گئے. آپ درمیان میں آ کے کھڑے ہو گئے کہ یار یو نو واٹ, ہاں جی خواتین کو بھی رائٹس ملنے چاہیے ہیں, مائنورٹیز کو بھی رائٹس ملنے چاہیے ہیں, سب اچھے اچھے طریقے سے رہنے چاہیے ہیں. یہ ساری ویلیوز جو آپ نے سیکھیں وہ آپ کو ایکسپوجر ملا. آپ پیدا ہوتے ہی ایسے نہیں تھے, آپ کے پاس وہ پریولیج تھا, وہ ایکسس تھا, لیکن چونکہ ان لوگوں کو ہیومنائز کرنے کا موقع نہیں ملا. ان کو یہ لگا کہ یار ہم ارد گرد, ہمارے ارد گرد انسان تھے, وہ انسان سارے کے سارے بڑے اچھے تھے, ہم جیسی باتیں کرتے تھے, اب ہم آن لائن جاتے ہیں اور بہت سارے اور انسان ہیں اور وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. تو امیڈیٹلی ان کی ایک دم سے ایک اگریشن سا بڑھ گیا کہ یار یہ کیسا ملک ہے, یہ کیسے لوگ ہیں, ان کے کیسے خیالات ہیں, کس قسم کے لوگ ہیں یار, او مائی گاڈ. اچھا میرا چونکہ ایکسپیرینس ہو رہا تھا وتھ ڈائیورسٹی تو میں نے ان کو ہیومنائز کیا. میں نے اس میں دیکھا کہ اگر کوئی بندہ آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ یار عورتوں کو تو مارنا چاہیے یا بیویوں کو مارنا چاہیے, اسلام میں یہ ہے, تو میں نے دیکھا کہ یار اگر وہ یہ بات کر رہا ہے نا تو اس کے آگے پیچھے وہ بہت نارمل باتیں کر رہا ہے, وہ ایک نارمل بندہ ہے, وہ ایکچوئل میں ایک سائیکوٹک سوسیوپیتھ نہیں ہے جو کہ وہ مارنا چاہتا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی کسی جگہ کے اوپر اس کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے. اور میں نے اس سے ڈسکشن کی اور میں نے یو نو آرگیومنٹس کی اس کے اوپر, اور ان اے ویری سول وے, اینڈ تھرو آؤٹ دیٹ لائف سائیکل میں نے اس کو فلپ ہوتے دیکھا, میں نے اس کو چینج ہوتے دیکھا. تو مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ موسٹلی اگر لوگوں کے پرمیٹیو کوٹ ان کوٹ آئیڈیاز ہیں تو وہ پرمیٹیو آئیڈیاز لیک آف نالج اور لیک آف ایکسپوجر کی وجہ سے ہیں. اینڈ اگین یہاں پر میں مینشن کروں گا کہ جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ ہیومنائز کرنے کا موقع ملا. جب انٹریکٹ کیا تو ہیومنائز کیا اور یہ سمجھا کہ یار یہ بھی انسان ہے, یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سیم ہی چیز چاہتے ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ مختلف ہے, اور مے بی دے ہیونٹ تھاٹ ا لاٹ آف تھنگس تھرو, اینڈ سو یو کین چینج دیم وتھ کانورزیشن. ابھی جو میں نے بات کی نا ساری کی ساری, آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے, کلاسسٹ باتیں کر رہا ہے, یہ دیکھو ذرا کہ یار میں اپر مڈل کلاس تھا, یہ سارے مڈل کلاس تھے, اور مجھے پتا ہے پاکستان میں آپ کلاس کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کلاس کلاس لگائی ہوئی آپ نے. دیکھیں یہ سوسیولوجی کی ایک بیسک وہ ہے, آپ کلاسز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, سیگمنٹیشن ہوتی ہے. میں ایک ڈیٹا اینالسٹ ہوں بائی پروفیشن, تو میں جب انسانوں کو سمجھتا ہوں تو میں سیگمنٹس میں ڈال کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, یو نو اس کے اوپر اسٹڈی ہوتی ہے, کلاسز ہوتی ہیں, کلاسز کو جج بھی کیا جاتا ہے, کلاسز کے درمیان فرکشن بھی ہوتی ہے, اس کے اوپر فلسفہ بہت لکھا جا چکا ہوا ہے. اور اگر آپ نے اس کو ٹرولی سمجھنا ہے نا کہ یار واٹ ڈز اٹ مین ٹو لک ڈاؤن اپون اے کلاس وداؤٹ ایون نوئنگ اٹ, سب کانشیس بائسز, تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے ٹک ٹاک پہ کیسے ریئیکٹ کیا. جب ٹک ٹاک نیا نیا آیا تھا تب آپ نے کیسا ریئیکٹ کیا, اور آج بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے ٹک ٹاک پہ اسی طرح ریئیکٹ کرتے ہوں. کیا آپ نے بولا کہ یار ٹک ٹاک کرنج ہے, یار یہ کیا ٹریش کانٹینٹ ہے, یار یہ کیا عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں, یار یہ کون لوگ ہیں جو کہ عجیب و جاہل لوگ ہیں, کیا وہ حرکتیں کرتے ہیں. اگر آپ نے کبھی بھی یہ سوچا ہے نا, آپ نے کبھی کسی دوست سے یہ ڈسکشن کی, آپ نے بولا ہے کہ یار ٹک ٹاک پہ تو عجیب لوگ ہوتے ہیں یار, عجیب حرکتیں کرتے ہیں, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سر آپ میں بھی ایگزیکٹلی وہی مسئلہ ہے جو میرے اندر 2010 میں تھا, جس میں آپ کہیں نہ کہیں سب کانشیسلی آپ ایک ڈفرنٹ کلاس کے لوگوں کو جج کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ نفسیاتی طور پہ سائیکو نہیں ہیں, اور وہ ٹک ٹاک کو دیکھ کے ایسے نہیں ہوئے, وہ ہمیشہ سے ایسے تھے. فرق یہ ہے کہ پہلی دفعہ آپ کو وہ لوگ نظر آ رہے ہیں, پہلے وہ اپنے ایک اتنے ڈسٹینس پہ تھے, آپ نے ان کو اتنے ڈسٹینس پہ رکھا ہوا تھا کہ وہ صاف ستھرے ہو کے آپ کے سامنے آتے تھے, اور آپ کہتے تھے یار سب سیٹ ہے, سب اوکے. اب چونکہ ان کو فیئر نہیں ہے کہ یار ہمارے بابو افسر صاحب نہ دیکھ لیں, تو وہ اپنا کانٹینٹ ڈال رہے ہیں, آپ بھی وہ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں ٹرولی, اگر آپ اپنی پریولیج کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور آپ ٹھہراؤ کے ساتھ اور ہیوملٹی کے ساتھ اس کے اندر جاتے ہیں, چاہے آپ کو نہ سمجھ آئے, چاہے آپ اس سے ڈسگری کرتے ہوں, آپ اس کو جج نہیں کر سکتے, آپ اس کو کرنج نہیں بول سکتے. لیکن اگر آپ اس کو کرنج بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ بھی ایک فلٹر ببل میں رہے ہیں جس میں آپ کو یہ والی دنیا جو ہے نا اس کا ایکسیس نہیں ملا, اور آپ کو ایلیگنٹلی اس سے شیلٹر کیا گیا, اور اب جب آپ کو ایکسیس مل رہا ہے تو آپ انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں. اور یہ پارٹ سمجھنے کا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آج جو آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں نا, پولرائزیشن اور فرنجز بنے ہوئے ہیں اور کیمپس ہیں اور لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں, اس کی ایک میجر وجہ یہ ہے کہ 2013 میں جب انٹرنیٹ آیا تو پاکستانیوں کو اکراس پاکستان, گلگت سے لے کے گوادر تک, پورے پاکستان کو آپس میں ایک دوسرے سے ٹرولی پہلی دفعہ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا. ہم ایک بہت ڈائیورس نیشن ہے, ہماری بہت ساری لینگویجز ہیں, ہماری بہت ساری ایتھنیسٹیز ہیں, ہمارے بہت سارے کلچرز ہیں, اور انفارچونیٹلی پاکستانیوں کو ایون ود ان پاکستان ڈفرنٹ کلچر سے انٹریکٹ کرنے کا موقع نہیں ملا, جو کہ اب ان کو سوشل میڈیا پہ انٹرنیٹ کے تھرو مل رہا ہے. اور انفارچونیٹلی ہیومن بیہیویئر ایسا ہے کہ ہیومن بینگز آلویز ریزسٹ چینج, سو اس وقت آپ کا جو ورلڈ ویو, ہم سب کا ورلڈ ویو ہے, وہ انٹرنیٹ کے اوپر آ کر چینج ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کو ایکسیس مل رہا ہے بہت ساری ڈائیورسٹی کا, اور آپ کے بہت سارے فریم ورکس بریک ہو رہے ہیں, جو بچپن سے آپ کو بتائے گئے تھے وہ چیزیں بریک ہو رہی ہیں. کچھ اچھی چیزیں آپ کو پاکستان کے بارے میں یا کچھ لوگوں کے بارے میں بتائی گئی تھیں وہ بریک ہو رہی ہیں, کچھ بری چیزیں بتائی گئی تھیں وہ بریک ہو رہی ہیں, اینڈ آل آف دیٹ از میکنگ یو انکمفرٹیبل. اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جب انکمفرٹیبل ہوتے ہیں تو وہ ایک دم سے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, اور جب وہ ڈیفینسو ہوتے ہیں تو پھر وہ لڑنے پہنچ جاتے ہیں کہ یار یہ غلط ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے, اور جو فریم ورک انہوں نے اپنے دماغ میں بنایا ہوا تھا, کبھی ان کو کسی نے بے وقوف بنا دیا تھا, اس فریم ورک کو وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون دو میرے ایکسپیرینس میں تمام لوگ اچھے برے, امیر غریب, आप उनसे जब कोर फंडामेंटल्स की बात करेंगे ना, तो वो सब एक ही चीज़ चाहते हैं, वो सब एक ही आउटकम चाहते हैं, लेकिन उन सब का बेस्ड ऑन देयर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन देयर ओन ट्रॉमास, बेस्ड ऑन देयर ओन प्रॉब्लम्स दैट दे हैव गॉन थ्रू, उनका तर्ज फ़र्क होता है। वो गाँव का लड़का गरीब, जब वो लेट से जेंडर इशूज़ के बारे में बात करता है, तो वो अपने पिछले 25-30 साल की ज़िंदगी में जो उसने एक्सपीरियंस किया, जो देखा, उसकी बेसिस के ऊपर एक सोल्यूशन निकालता है कि यार ऐसा कर दो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं होगी। जो अर्बन है, जिसको एक्सेस था, जिसको प्रिविलेज थी, वो अपने फ्रेमवर्क से निकालता है। गलत दोनों नहीं है, फ़र्क ये है कि दोनों आपस में एक दूसरे को गालियाँ देने के बजाय कि तू लिबरल अर्बन या तू कंजर्वेटिव जाहिल, आपस में अगर बैठे और कहें कोर फंडामेंटल क्या है, उसके बारे में क्या बात है, दोनों एक दूसरे को ह्यूमनाइज करें कि यार वो भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूँ, दोनों के यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं, तो चीज़ें बड़े बेहतर से सॉल्व हो सकती हैं। खैर, मुझे अपसाइड ये हुई कि मुझे डाइवर्सिटी को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, फर्स्ट यूनिवर्सिटी, जो कि खैर बहुत सारे लोगों को मिलता है, तो दैट वाजंट दैट यूनिक। बट देन थ्रू सोशल मीडिया, जिसके अंदर मुझे बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे से इंटरेक्ट किया अक्रॉस द बोर्ड डिफरेंट शहरों से, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली, तो यहाँ पर मेरे लिए एक अपसाइड थी, जैसे मुझे बहुत सारे लोगों से सीखने को मिला और मुझे समझ आई कि कितनी डाइवर्सिटी ऑफ थॉट है पाकिस्तान के अंदर। और जहाँ पर लोग इस चीज़ के ऊपर परेशान हो रहे थे कि एक इंसान क्या कह रहा है, और वो उसके ऊपर फंस जाते थे, ओ यार तू क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, मैं ऑन द अदर हैंड इस चीज़ पे आता था कि क्यों कह रहा है। अगर एक इंसान कोई चीज़ कह रहा है तो क्यों कह रहा है, द वाई वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वैन यू बिगिन टू अंडरस्टैंड द वाई, यू कैन बैक ट्रैक टू अ पॉइंट वेयर उस बंदे के साथ वो क्या ज्यादती हुई या क्या ट्रॉमा हुआ जो आपने नहीं फेस किया, जिसकी वजह से आप उसकी बात को नहीं समझ पा रहे। और इस फ्रेमवर्क से जब आप रहना शुरू करते हैं ना, तो आप एक तो एम्पथाइज करना शुरू करते हैं, ह्यूमनाइज करना शुरू करते हैं, और आपकी ज़िंदगी की अपनी खपें बहुत कम हो जाती हैं, जिसमें आप फालतू में हर किसी पे गुस्सा हो रहे हैं और हेट कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि दुनिया तबाह हो रही है, अगेन आपके अंदर एक ठहराव आता है। खैर, इसी टाइम पे मेरी कुछ वीडियोस वायरल हुई, उसमें से एक वीडियो की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वर्ल्ड बैंक में मैं एज एन ICT कंसल्टेंट काम कर सकूं, और उससे मुझे मौका मिला कि पाकिस्तान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके गाँव के लेवल के ऊपर, शहरों के लेवल के ऊपर वाटर एंड सैनिटेशन के प्रॉब्लम्स को देखूं, समझूं और उसके ऊपर रिपोर्ट करूं। और उसमें जब मैं डिफरेंट डिफरेंट गाँव में गया और मैंने देखा कि यार लोग 5,000 रुपए के पाइप्स डलवाने के लिए तरस रहे थे कि आप पाइप डलवा दें ताकि हमें क्लीन वाटर मिल जाए, जब फैसलाबाद जैसे शहर में मैंने देखा कि पूरा पानी का निज़ाम डोंकी कार्ट्स पे चलता है, हालांकि नहर सामने है लेकिन कोई पाइप नहीं बिछा सकता, वो डोंकी कार्ट जाएगा ब्लू रंग के कंटेनर्स में पानी डाल के घरों में लेगा, मतलब इट वॉज सच बेसिक स्टफ दैट मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तान वॉज जस्ट डिड नॉट हैव एक्सेस टू, एंड दैट रियली ओपन्ड माई आईज टू दी एक्सटेंट के मैंने तकरीबन 2 साल वर्ल्ड बैंक में जॉब की और बड़ी लुक्रेटिव जॉब थी, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक स्टूडेंट था उस टाइम के ऊपर और मैं लॉ स्टूडियो से कॉन्टेंट भी करता था, दरमियान में जो मुझे डेज मिलते थे उसमें मैं ट्रैवल कर रहा होता था, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर, कराची, और साथ साथ मेरी फुल टाइम यूनिवर्सिटी चल रही थी फास्ट की, जिन लोगों ने फास्ट से ग्रेजुएट किया उनको पता है कितना फास्ट आपको रगड़ा देता है, लेकिन मैं वो सारा कुछ कर रहा था, मैं बड़ी खुशी खुशी कर रहा था, लेकिन आहिस्ता जैसे मैं ये एक्सपोज हो रहा था इन चीज़ों को, तो मेरा अपना एक आइडियोलॉजिकल, लाइक आई सेड, कि एक फिलोसॉफिकल एवोल्यूशन थी, तो मेरा दिल नहीं मान रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार ये कैसे ऐसा मुमकिन है, लाइक मैं किस बबल में था और ये क्या दुनिया चल रही है। और वर्ल्ड बैंक की जो जॉब थी उसे मजेदार बात ये थी कि मुझे तुन के पैसा मिल रहा था, मतलब डॉलर्स में मिलता था, और मेरे इवन सिक्योरिटी डिटेल होती थी, डाला होता था मेरे पास अगर मैं ट्रैवल कर रहा होता था, नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी होती थी क्योंकि आप वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट हैं, आपका उन्होंने बड़ा ख्याल रखना है। मैं जाके महंगे तरीन होटलों में ठहरता था, हर शहर में महंगा तरीन होटल, और उसमें 2-3 घंटे का काम और आपको 8 घंटे की तनख्वाह, और मैं जा रहा हूँ गाँव के लेवल के ऊपर और डिफरेंट शहरों में, और वहाँ मैं देख रहा हूँ कि यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट 5,000 रुपये की, 10,000 रुपये की, 50,000 रुपये की है, मैं 1,000,000 रुपये की कॉस्ट लगाकर, वर्ल्ड बैंक का खर्चा लगाकर मैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखने गया हूँ, मेरा आई मीन आई डोंट नो, मेरा ज़मीर नहीं माना उस टाइम के ऊपर, कि आई थॉट कि यू नो व्हाट वी आर डूइंग इज़ रॉन्ग, आई थॉट कि मुझे उस वक्त समझ आई, उससे पहले आई वुड रियली लुक अप टू वर्ल्ड बैंक एंड UN एंड लॉट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, वेस्ट अगेन जो वेस्टर्न एक वो था ना कि यार ये लोग बड़े एडवांस्ड हैं, ये बड़े अच्छे हैं, ये आके हमें हेल्प करना चाहते हैं, हम ही चुत्तू हैं, कि हमें जो ना अपने आप को हेल्प नहीं करने का शौक, वहाँ वो मेरे थोड़ा ब्रेक होना शुरू हुआ। मैंने कहा यार ये तो गलत हो रहा है कि ये मिलियन ऑफ डॉलर्स यहाँ लेकर आते हैं, पैसा सारा कंसल्टेंट ले जाता है, पैसा सारा थर्ड पार्टी ले जाती है, आप जाते हैं $10 million का प्रोजेक्ट है, 10,000 रुपये आप लगाते हैं, उसके बाद आप 10,000 रुपये को सेलिब्रेट करने के, रिपोर्टें लिखने के, तस्वीरें खिंचवाने के $9 million कंसल्टेंट को दे जाते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। और आखिर में अगर वो कर्जे का प्रोजेक्ट है तो मकरूज आपकी कॉम हो रही है। तो खैर मैं अपने बॉस के पास गया, उस टाइम के ऊपर मैं बच्चा भी था, मुझे समझ भी नहीं आई, मैंने कहा सर मैं छोड़ रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा ना ये। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार क्या मतलब, वो बड़े गुस्सा भी हुए, उन्होंने कहा यार तुम्हें पता है कितनी बड़ी चीज़ है जो तुम्हें मिली हुई है और तुम नौजवानों का ये मसला है, तुम सीरियस नहीं हो किसी चीज़ के बारे में, और डू यू नॉट अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज एंड हाउ मच मनी यू आर मेकिंग एंड व्हेन यू ग्रेजुएट हाउ मच मोर मनी यू विल बी एबल टू मेक एंड इट वॉज क्रेजी मनी, लाइक आई कैन टेल यू इट वॉज क्रेजी मनी। मैं उनको ये भी नहीं बोल सकता था कि मैं अगर फलसफे में घुस जाता तो वो जाहिर उन्होंने मुझे कन्विंस करना था फॉर वन रीजन और दी अदर, मैं कन्विंस होने वाला नहीं था। तो मैंने बस उनको बोला, मैंने कहा सर वाइब्स नहीं हो रही मुझसे, मैनेज नहीं हो रहा, मैं करके निकल गया, बड़ा शर्मिंदा भी बड़ा हुआ, लेकिन मैंने वो छोड़ दिया उस टाइम के ऊपर। और मुझे ना मतलब एक दिमाग खुला मेरा इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और बहुत सारे बायसेस इस पूरे वेस्टर्न लेड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कि यार वो आते हैं और वो बड़े फिट हैं और उन्होंने यू नो उन्होंने रेलवे बनाई, बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में थे कि मुगल तो अय्याश थे, ये लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे और मुगल जो थे ना वो तो अय्याशी कर रहे थे, इस वजह से उनका डाउनफॉल आया। मतलब वो वाली आइडियोलॉजीज़, वो वाली थाट्स वर वेरी प्रेवलेंट इन आवर सिस्टम, हमने कभी सोचा ही नहीं। इस पे बड़े सारे जो मेरे लेफ्ट के कमेंटेटर्स हैं वो हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो है हिस्ट्री कंट्रोल की हुई है और स्टेट ने जो है वो बड़ी गलत किस्म की हिस्ट्री बताई हुई है। तो जहाँ पर ओए लेवल्स हैं वहाँ पे कंट्रोल नहीं था, वहाँ पर भी आपको बहुत गलत हिस्ट्री बताई गई थी, प्रोपेगेंडा हर तरफ से हो रहा है, हमारी स्टेट कोई बहुत अनोखी नहीं है। बट एनीवेज इसके ऊपर तो पूरी एक वीडियो होगी मेरी अलग से, बट पॉइंट इज के यहाँ पर ना मेरा एक्सपोजर की वजह से दिमाग फर्दर खुलना शुरू हुआ। मैंने कहा यार जो मैंने सोचा था ना, यानी कि अगर मैं एक राइट से मैं उठ के जंप करके लेफ्ट पे चला गया था, या आई डोंट इवन नो कि मैं उसको लेफ्ट एंड राइट कह सकता हूँ, बट मैं कंजर्वेटिव से या ईस्टर्न से मैं सडनली जो वेस्टर्न हो गया था, मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक करना शुरू हो गया उस वेस्टर्न से, क्योंकि मेरा फ्रेमवर्क अब बहुत ज़्यादा लॉजिक पे बन चुका था। और लॉजिक, अगेन कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हूँ, उसमें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक बताई जाती है, तो मेरा हो गया था कि यार अब इमोशंस को साइड पे रख के लॉजिकल देखो, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है तो उसी प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। लेकिन जब मैं वेस्ट को स्टडी कर रहा था या मैं वर्ल्ड बैंक में जॉब कर रहा था, वहाँ मुझे नजर आया कि यार लॉजिक वॉजिक नहीं चल रही, यहाँ पर भी वाइब्स चल रही हैं, बस फर्क ये कि उनकी अलग वाइब है और वो चूंकि फ्लैशी है और खूबसूरत है तो वो वाइब जो है वो कूल वाइब है, वो अच्छी वाइब है, वो डेवलप्ड वाइब है, और हमारी वाइब थोड़ी सी क्योंकि मिट्टी के घर वाली है और कूड़ा क्रिकेट वाली है तो हमारी प्रिमिटिव वाइब है, बट हैं दोनों वाइब्स। फिर इसी के साथ मुझे याद है 2014 की बात है, UNDP का एक पैनल डिस्कशन थी लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में। अच्छा, अब लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में अगेन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्राउड आता है, और मैं चूंकि उस टाइम पे मेरी कंटेंट वायरल हो रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा ना एकदम से सर्टन इंस्टीट्यूशंस ने सर्टन जगहों पे एक्सेस मिल गया था, मुझे एम्बेसीज कॉल कर रही थी, मुझे UNDP वाले पैनल डिस्कशंस पे बुला रहे थे, मैं एकदम से ना बहुत एक डेवलपमेंट सेक्टर, वर्ल्ड बैंक, USAID, UN इन वाले सर्कल्स में इन होना शुरू हो गया हुआ था। और उन्होंने कहा कि यार ये देखो बड़ा अच्छा लड़का, इंग्लिश विंग्लिश भी बोलता है और यू नो अच्छी पीस लव एंड ह्यूमैनिटी की बातें करता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेस मिलना शुरू हो गया था। इसी में से एक थी, मुझे याद है UNDP की एक पैनल डिस्कशन थी जिसमें यूथ लीडर्स को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि जी हम फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में पैनल डिस्कशन थी तो मैं चला गया लाहौर। वहाँ मेरे साथ स्टेज पे मुझे याद है वकास अली साहब थे, जिनका वो एटम्स जो जूते हैं मारखोर उस टाइम के ऊपर उनका ब्रांड था, अब एटम्स है बड़ा मशहूर अमेरिका का ब्रांड, वो भी थे। पाकिस्तान की जो सब फुटबॉल टीम की कैप्टन थी, बड़ी मशहूर यू नो वेरी सक्सेसफुल, वो भी थी। और इसी के साथ एक खातून थी गुललई इस्माइल साहिबा, वो भी उस टाइम पे उस स्टेज पे थी। अच्छा, गुललई साहिबा जो थी वो बहुत पैशनेट थी डेमोक्रेसी के बारे में और बहुत पैशनेट थी सेक्युलरिज्म के बारे में, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बोला कि यू नो ये जो है ना पाकिस्तान के अगर मसाइल आपने सारे सॉल्व करने हैं तो आपको डेमोक्रेसी चाहिए। बारहा उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी के बगैर कोई फ्यूचर नहीं है, मुशर्रफ साहब बहुत बुरे थे और डिक्टेटरशिप बहुत बुरी थी और डेमोक्रेसी हमारी सेल्वेशन है। और साथ ही उन्होंने बोला कि सेक्युलरिज्म के बगैर कोई फ्यूचर नहीं है, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट्स ने हमें तबाह कर दिया और सेक्युलरिज्म आप ले आओ आपके सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अब आखिर में ना जब ये पैनल डिस्कशन खत्म हुई, सब ने मुख्तलिफ बातें की, मैंने भी कोई डिफरेंट डिफरेंट बातें की, जब वो ख़त्म हुई तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ, एक साहब ने बोला, क्योंकि मैंने अपनी टॉक पे बोला था, मैंने कहा था कि यार हमारे यहाँ हीरोज़ हमने नहीं बनाए, अनफॉर्चुनेटली हमारे नौजवानों को अच्छे रोल मॉडल्स नहीं मिले इन टर्म्स ऑफ हीरोज़, और वो सिर्फ जो मिले भी वो या तलवार वाले मिले या मैक्सिमम आपको क्रिकेट खेलने वाले मिले, उसके अलावा आपको कोई रोल मॉडल्स ग्रोइंग अप नहीं मिले जिसको आप देखते और आप एम्यूलेट करते कि यार मैं बड़े होकर बिजनेसमैन बनूंगा या मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा या मैं फिजिसिस्ट बनूंगा या जो भी बनूंगा। तो खैर, इसके बारे में बात हो रही थी तो जब फाइनल Q&A हुआ तो उसके ऊपर उन साहब ने पता नहीं इस तरह का सवाल किया कि हमें तो मोहम्मद बिन कासिम एज अ रोल मॉडल मिले और ये तो इस्लाम का मसला है, और इस्लाम, डोंट यू थिंक कि इस्लाम जो है वही मसला है मुल्क का। अब ये याद रखिए कि मैं कहीं से भी राइट विंगर नहीं था इस पॉइंट के ऊपर, ना ही मैं कोई रिलीजियस फैनेटिक था, ना ही मैं कोई यू नो कंजर्वेटिव था, जो कि आप एक एक्सपेक्ट करते हैं ना एक डब्बा जो है कंजर्वेटिव वाला कि यार ये बंदा दाढ़ी वाला ये तो ऐसी बातें करेगा। मैं एक लॉजिकल सोचने वाला बंदा था और मेरे लिए उस पॉइंट के ऊपर जब वो साहब आके इस्लाम को अटैक कर रहे थे तो मेरे लिए बड़ी लॉजिकल सी बात थी, जिसमें मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मेरी बात सुने, और कोई तकरीबन 1200-1300 लोग बैठे हुए थे ऑडियंस में ना, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मुझे यहाँ पे हाथ खड़े करके बताएं कि कितने लोगों ने कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा है। अच्छा ये लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल की बात है, ठीक है, विच इज द स्पेस जहाँ सारे लिटरेरी लोग इकट्ठे होते हैं, पढ़ने किताबें पढ़ने वाले पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल एलीट वहाँ पे इकट्ठा होता है। सर 1200-1300 के क्राउड में से एक बंदे ने हाथ नहीं खड़ा किया कि मैंने ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़ा है। और जब मैंने वो देखा, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप इस पूरे हॉल को देखें, आप मुझे कह रहे हैं कि मसला इस्लाम है, आपने इस्लाम को पढ़ा तक नहीं है, हमारा मसला ये कैसे हो सकता है? मतलब पहला स्टेप तो ये होगा ना, आप अगर किसी चीज़ से डिसएग्री भी करते हैं तो आप उसका मुतालिया तो करें। आप कैसे किसी चीज़ से डिसएग्री कर सकते हैं जब तक आपने उसको स्टडी ही नहीं किया? तो आप अगर कह रहे हैं कि यार ये मसला इस्लाम का है तो आप पहले उसको स्टडी करें, फिर आप मुझे स्पेसिफिकली बताएं क्यों है मसला इस्लाम का। लेकिन जब तक आपने नहीं स्टडी किया, आपने पहले इस्लाम को उठाया और इस्लाम को उठा के आपने एक्सट्रीमिस्ट के हाथों में दे दिया कि यार तुम इसकी सबसे गंदी इंटरप्रिटेशन निकालो और फिर मुझे बताओ वो क्या है, और फिर मैं तुम्हारी इंटरप्रिटेशन को रिटर्न इन स्टोन करके कहूंगा कि यार चीज़ ही ख़राब है। आई मीन दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी अगेन। तो मैंने उनको एक बड़ी बेसिक सी बात बोली, मैंने कहा जी आप रिलीजन को स्टडी करें, और जब आप रिलीजन को स्टडी करेंगे, आप रिलीजन को रिफॉर्म करें, पढ़ा लिखा आदमी जब रिलीजन को स्टडी करेगा तो वो रिलीजन को सही वाला रिलीजन आगे लेकर आ सकता है। सो आई डोंट पर्सनली थिंक दैट रिलीजन इज द प्रॉब्लम, आई थिंक द वे दैट रिलीजन हैज बीन इंटरप्रेटेड इज द प्रॉब्लम। अगेन बड़ी एक छोटी सी बात है, एक पैनल डिस्कशन है, एक मुकालमा है, उन साहब ने उसको समझा बहुत अच्छे से, उन्होंने उसको रिसीव किया, उन्होंने कहा ओके थैंक यू। गुलालई साहिबा ने इस टाइम के ऊपर बोला, उन्होंने मुझे काउंटर किया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं और यही तो मसला है, आप क्यों रिलीजन 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 कर रहे हैं, हमें रिलीजन की नहीं ज़रूरत, हमें सेक्युलरिज्म चाहिए, आप मुल्क को सेक्युलर कर दें तो सब मसले सॉल्व हो जाएंगे। आप सारे आप फिर यही कह रहे हैं कि रिलीजन को समझें, रिलीजन को रिफॉर्म करें। अच्छा मैंने उनको बोला, मैंने कहा गुलालई साहिबा मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में आपने कॉन्स्टेंटली अपनी टॉक पर डेमोक्रेसी की बात की, ठीक है, आपने कॉन्स्टेंटली कहा कि डेमोक्रेसी होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। मैंने कहा आज आप रेफरेंडम कराएं और मुझे बताएं, इस मुल्क से आप पूछें कि कितने लोग जो हैं वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान चाहते हैं और कितने लोग सेक्युलरिज्म चाहते हैं। अगेन माइंड यू उस टाइम के ऊपर मेरा दिमाग ये कहता था कि सेक्युलर हो जाए, मतलब मैंने जो दुनिया देखी थी, यार आप बाहर जाते हो, हर जगह जाते हो, किसी को कोई 1.5 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, हर बंदा अपना रिलीजन फॉलो करे, सो सेक्युलर उस वक्त मेरे दिमाग में ये था कि स्टेट जो है वो इन्फोर्स कुछ नहीं करेगी, सुबह शाम आपको बैठ के रिलीजियस भाषण नहीं मिलेगा, हर बंदा अपना अपना रिलीजन करे, अगर सब मुसलमान हैं सब मुसलमान अपना जो उन्होंने करना है करें, नहीं है वो नहीं करें, सेक्युलर है नो प्रॉब्लम। लेकिन लॉजिक का तकाजा ये था कि मैं उस पर लॉजिकली आर्ग्यू करूं कि आपने जब ये बात बोली है कि डेमोक्रेसी इज सुप्रीम, तो आप जाके लोगों से रेफरेंडम करा लें, क्या मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान वॉन्ट्स कि सेक्युलरिज्म आए इस मुल्क के अंदर, या वो चाहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक आए? अगर इस्लामिक रिपब्लिक आए और दैट इज़ द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी, देन हाउ कैन यू गो अहेड एंड से कि नहीं वो डिसीजन गलत है, वो मेरा एक ऑल्टरनेट डिसीजन इम्पोज हो? एंड डोंट यू थिंक इट इज़ मोर लॉजिकल कि इफ़ द मेजॉरिटी एडहेयर टू द आइडिया दैट पाकिस्तान नीड्स टू बी एन इस्लामिक रिपब्लिक, देन मे बी यू नीड टू रिफॉर्म द आइडिया ऑफ हाउ रिलीजन इज प्रैक्टिस्ड एंड विद इन द सेम फ्रेमवर्क दैट ऑलरेडी एवरीबडी अडहेयर्स टू, उसमें आप जाके देखेंगे मुआशरे के क्या मसाइल हैं और उन मसाइल का हल उसके थ्रू आप लोगों में इंप्लीमेंट करें। खैर इसके ऊपर उन्होंने बैक ट्रैक किया और बैक ट्रैक करके उन्होंने कहा कि नहीं ये जो है ना कुछ चीज़ें जो हैं क्योंकि लोग जाहिल होते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको करनी पड़ती हैं फॉर द ग्रेटर गुड। यहाँ पर आके मेरा माइंड ही बंद हो गया ना कि यार मतलब अगेन एरर 404 राइट, लॉजिक गोज डाउन द ड्रेन एंड सडनली यू वॉन्ट डेमोक्रेसी बिकॉज यू कैन कंट्रोल इट, यू डोंट वॉन्ट डेमोक्रेसी एज द विल ऑफ द पीपल बिकॉज इट्स द विल ऑफ द पीपल, देन हाउ कैन यू लुक डाउन अपॉन देम, हाउ कैन यू से दे आर जाहिल, हाउ कैन यू से यार उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो तो बेचारे उनको पता ही नहीं है वॉट्स गुड फॉर देम। खैर मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि जी यू कांट इम्पोज योर विल ऑन मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अगर वो एक चीज़ सोच रहे हैं, अगर एक उनके सेट ऑफ आइडियोलॉजी है तो आप ये नहीं कर सकते कि बस ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपने चीज़ चेंज कर दी, जो कि हिस्टोरिकली हमारे यहाँ ये होता रहा है कि हमारी पढ़ी लिखी एलीट जो है वो जाती है और लॉ बना देती है, विच इज़ वाई हमारे यहाँ लॉज बनते हैं, चेंजेस कोई नहीं आते, क्योंकि लॉज आर नॉट ड्रिवन बाय द पब्लिक, दे आर इम्पोज फ्रॉम अनदर थर्ड कल्चर, उसको देख के उसको स्टडी करके हम लॉ तो बना देते हैं, लोगों को समझ नहीं आती। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप इम्पोज नहीं कर सकते एंड जस्ट बाई चेंजिंग द सिमेंटिक्स, मतलब आप लैंग्वेज बदल के आप सोसाइटी में चेंज नहीं लेकर आ सकते। मैं मानता हूँ कि इंटॉलरेंस है सोसाइटी में, खासकर उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, मैं मानता हूँ कि ये मसाइल हैं, लेकिन इनका हल इसमें नहीं है कि आपने मुल्क को सेक्युलर डिक्लेयर कर दिया तो सडनली जो है अब सब अच्छे अच्छे भाई भाई होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे होता ना तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री थी। और उस टाइम पे मैंने उनको बोला था, मैंने कहा क्योंकि उस टाइम पे भी आपको रिलीजियस इंटॉलरेंस नज़र आना शुरू हो गई थी इंडिया के अंदर, मैंने कहा अमेरिका इज़ ऑफिशियली अ क्रिश्चियन कंट्री लेकिन वहाँ पर आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन बहुत ज़्यादा मिल रही है, उस टाइम के ऊपर तो खासकर आपको बड़ी क्लियरली नज़र आती थी, वेयर एज इंडिया विच इज़ ए सेक्युलर कंट्री ऑफिशियली वहाँ पर आपको रिलीजियस इंटॉलरेंस नज़र आ रही है। सो सिमेंटिक से फ़र्क नहीं पड़ता, और ख़ासकर आप मुझे बताएं कि अगर آپ نے یہ سیمینٹکس چینج کی اور لوگوں نے اسے نہیں ایگری کیا اور آپ نے یہ امپوز کر دی ان کے اوپر, تو جب اس کے بعد اگر خون خرابہ ہوگا اور یو نو پروٹیسٹس ہوں گی اور تباہی ہوگی, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیونکہ اگین آپ نے ایک ایسی چیز جس کو لوگ ایگری ہی نہیں کرتے آپ نے ان کے اوپر امپوز کر دی. اور اگر اس کا آپ نے سولوشن نکالنا ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جس لینگویج کو لوگ سمجھتے ہیں, جس آئیڈیالوجی کو لوگ بلیو کرتے ہیں, اسی آئیڈیالوجی کی بیسس کے اوپر ان کو سمجھایا جائے, اسی آئیڈیالوجی میں جا کے جھانکا جائے کہ یار اس میں ٹالرنس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, اس پہ پیس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, اس میں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, اور پھر اس کو استعمال کر کے لوگوں کو سمجھایا جائے. ڈونٹ یو تھنک دیٹ وڈ بی اے بیٹر وے ٹو سالو دس پرابلم؟ خیر اس وقت تک آرگیومنٹ بہت ہیٹڈ ہو چکی تھی, تو ماڈریٹر آئے, انہوں نے کہا بڑی اچھی ڈسکشن ہو گئی یہ وہ, اور انہوں نے معاملہ ختم کیا اور ہم اسٹیج سے اتر گئے. اور یہ جو کلیش تھا, جو لیک آف لاجک تھی, اگین میں بڑا کنفیوز, میں سوچ رہا یار یہ تو اپیرنٹلی میں ایسے لوگوں میں بیٹھا ہوں جن سے میں اگری کرتا ہوں, لیکن میرے حساب سے تو یہ سارے بڑے لاجیکل لوگ تھے, مے بی اتنے لاجیکل نہیں ہیں. خیر وہ پینل ڈسکشن ختم ہوئی, سر میں ادھر اسٹیج سے اٹھا, اٹھ کے میں جیسے ہی بیک اسٹیج آیا ایک براج آف پیپل کیم اینڈ اسٹارٹڈ اٹیکنگ می. امیجن اے 24 ایئر اولڈ کڈ جو کہ یو نو یونیورسٹی سے کلاسز اٹینڈ کر کے لاہور گیا ہے, لاہور جا کے پینل ڈسکشن میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے, ہی واز مے بی 60 سم تھنگ, اور وہ چیخنا شروع ہو گئے, چلانا شروع ہو گئے میرے اوپر. مین مطلب ایونٹ ہے اس پہ چلانا شروع ہو گیا کہ تم جیسے لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے بچے مرتے ہیں. آئی بلیو یہ 2015 کی بات ہے اور اے پی ایس کا حادثہ ہوا تھا کوئی 2-3 مہینے پہلے, تو اس کے اوپر آ کے چلانا شروع ہو گیا کہ تمہاری وجہ سے بچے مر رہے ہیں, اور میں ان کی شکل دیکھ رہا کہ انکل آئی مین ہاؤ کین یو سے دیٹ, لائک ہاؤ کین یو سے کہ میری وجہ سے بچے مر رہے ہیں جسٹ بیکاز آئی ایم سیئنگ دیٹ مے بی وی ہول نیڈ ٹو اسٹڈی ریلیجن اینڈ انڈرسٹینڈ واٹ اٹ سیز اینڈ دین have all the arguments in the world. اور انہوں نے مجھے بولا کہ میں تو ایم آئی ٹی سے پی ایچ ڈی کر کر آیا ہوا ہوں اور میں اتنی بڑی چیز, اور انہوں نے جا کے اپنے کریڈینشلز بتانا شروع کر دیے کہ میں ایم آئی ٹی سے گریجویٹ کیا ہوں اور میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, اور تم جیسے جاہل لوگ ہیں اور تم ٹیررسٹ ہو, اور تمہارے لوگ تم جیسے لوگ ٹیررزم پر پڑھا رہے ہیں. اینڈ دیٹ فار می دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرئنس ود دی ایکسٹریمزم, کیونکہ میں نے اس سے پہلے ایکسٹریمزم ایکسپیرئنس کیا تھا رائٹ پہ ٹیررزم کی مد میں, یہاں پر فار دا فرسٹ ٹائم میں نے ایکسٹریمزم ایکسپیرئنس کیا آن دا لیفٹ یا آن دا لبرل فرنٹ, جس پہ وہ انکل میری ایک رینڈم سی بیسک سی لاجیکل بات کے اوپر مجھے ٹیررسٹ بنا چھوڑے تھے اور میرے پہ چیخ رہے تھے. اور آئی واز شک ٹو بی ویری آنیسٹ, میں اس کو ہسکیل میں لگا دوں, لیکن آپ کے اوپر ایک 60 سال کے انکل یو نو فل وہ جو نہیں انکل ہوتے ٹھیٹ انگریزی اور ایک بڑی لاہور کی گلبرگ والا کراؤڈ, وہ آپ پہ آ کے چیخ رہے ہیں اور میں یہاں پر آیا ہوا ہوں, میں آلریڈی یو نو امپوسٹر سنڈروم بھی ہے, It was weird. Anyways, again, ek incident jisne mujhe sochne pe majboor kiya. Ab is point ke upar na meri disillusionment from my original belief system of this Eurocentric westernized jo belief system tha usse disillusionment hona shuru ho gayi hui thi, aur probably yahi reason tha ke uske baad jab bhi mujhe thodi si traction milti thi to main constantly ek controversy mein padta tha, kyunki main dikhne mein bolne mein network mein wo ladka tha jo ke ویسٹرنائز تھاٹ کے فلٹر ببل میں تھا. مطلب میں اگر بولوں گا تو میرے ارد گرد تمام وہ لوگ سننے والے ہیں جو کہ اس ویسٹرنائز تھاٹ کو فیکٹ سمجھتے ہیں, اور چونکہ میں لاجک کی بنیاد کے اوپر باتیں کر رہا تھا تو وہاں پر ہمیشہ کوئی کانٹروورسی ہوتی تھی اور ہمیشہ جو ہے نا مجھے مار پڑتی تھی. اور ڈفرینس یہ تھا کہ میں ایموشنز یا آئیڈیالوجی کے ساتھ نہیں سوچ رہا تھا, میں لاجیکلی سوچ رہا تھا, میں چیزوں کو اوریجنل تھاٹ کے ساتھ انالائز کر رہا تھا, اور اس کی وجہ سے اگین پیپل ور ناٹ ویری ہیپی ود دیٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اسٹل میں اس پوائنٹ کے اوپر اگر اپنے آپ کو پلیس کروں تو میں سینٹر لیفٹ تھا, جسے مجھے اسٹل یہ لگ رہا تھا کہ یار ٹھیک ہے چلو لیفٹ کے اندر کچھ ہپوکریٹیکل باتیں ہیں, کچھ غلط باتیں ہیں, ویسٹ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس پہ کچھ کریکس ہیں, لیکن اسٹل دیر اوور آل اے بیٹر سسٹم, اینڈ ہمارے معاشرے کو ایک اوور ہال کی ضرورت ہے اور ہمارے معاشرے کو چینج کی بہت شدید ضرورت ہے اور ہمیں وہ کرنا چاہیے, اینڈ اوور آل ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس جو رائٹ ہے جو کنزرویٹیوز ہیں دے آر اے بگر پرابلم. خیر میں گریجویٹ ہوا, گریجویٹ ہونے کے بعد میں نے کانٹینٹ وغیرہ چھوڑ دیا, میں ایک جاب پہ لگ گیا, اسی طرح میں نے 3-4 سال گزارے, اور 2018 میں بفور آئی اسٹارٹیڈ کانٹینٹ اگین میں انسٹاگرام پہ تھوڑا تھوڑا ایکٹیو ہونا شروع ہو گیا تھا. تو مارچ کے مہینے میں عورت مارچ نیا نیا اس ٹائم پہ شروع ہو رہا تھا, اور میں بڑا سپورٹیو تھا عورت مارچ کے لیے, کیونکہ مجھے تھا کہ یار خواتین کو ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے, خواتین کو اپرچونیٹیز ملنی چاہیے, خواتین کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ملنی چاہیے, اور اگر عورت مارچ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر خواتین فائنلی اپنے لیے وہ اسپیس بنا رہی ہیں تو اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے. میری اس ٹائم پہ شادی بھی ہو چکی تھی, میں نے اپنی بیگم کو بھی بولا کہ آپ کو جانا چاہیے عورت مارچ پہ اور بڑا اچھا ہے اور سارا کچھ ہے. اور 2017 میں بھی آئی بلیو ہوئی تھی عورت مارچ, اور اس کے اوپر بڑی کانٹروورسی جنریٹ ہوئی تھی, یہ دوسری دفعہ ہو رہی تھی, اور اس پہ پھر سے جو ہے وہ جس دن مارچ تھی اس دن میں تو خیر آفس میں تھا, میں جاب کر رہا تھا, تو شام کو میں آیا, میں نے دیکھا کہ پھر سے وہی ہوا کہ جی کچھ وہ پوسٹرز وغیرہ ہیں اور وہ بڑے نا اسپیسیفک فرنج کے پوسٹرز ہیں, ڈی ایچ اے لاہور کے اندر سے وہ نکلے ہوئے پوسٹرز ہیں, اور وہ کوئی آنٹیز ہیں, انہوں نے سن گلاسز پہنی ہوئی ہیں, انہوں نے پوسٹر پکڑے ہوئے ہیں اور پورا میڈیا ان کے بارے میں بات کر رہا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں آگے پیچھے بڑے اچھے اچھے لوگوں نے آ کے اس وقت اٹھائے ہوئے ہیں کہ یار بلوچستان سے خواتین آئی ہوئی ہیں, مڈل کلاس خواتین, لوور مڈل کلاس خواتین, وہ ایجوکیشن کی بات کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں ہمیں رائٹ ٹو ایجوکیشن چاہیے, ہمیں رائٹ ٹو انہیریٹنس چاہیے, اور پورے میڈیا میں کن پوسٹرز کی بات ہو رہی ہے کہ یار یو نو گردن کاٹ کے مائکرو ویو میں ڈالی بھی ہے, تو یہ ہوا ہوا ہے, تو وہ ہوا ہوا ہے, بہت ہی آؤٹ ریجیس جو کانٹینٹ تھا, جو کہ اگین کس نے بنایا ہوا ہے, لاہور میں ڈی ایچ اے میں کھڑے وہ خواتین جو کہ پریولیج میں بہت اوپر ہیں ورسز اے لاٹ آف ادر ویمن جن کو وہ اسپیس ملنی چاہیے تھی. اب میں بیٹھا ہوا ہوں, میں سوچ رہا ہوں کہ یار پورا پاکستان اس کے اوپر ڈبیٹ کر رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ پوسٹر جو ان خاتون نے ڈی ایچ اے میں پکڑا ہوا ہے کتنا برا ہے, اور وہ اگنور کر رہا ہے کہ یار کتنی اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ہمیں خواتین کو حقوق دینے ہیں. اور اگین میں نا اس میں میں ابھی لیفٹ کی سائڈ پہ ہوں, اور میں ابھی یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ ڈی ایچ اے کی خواتین کتنی بری ہیں, انہوں نے یہ پوسٹر اٹھا لیے, اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار پتہ نہیں کیوں لوگ ان پوسٹرز پہ فوکس کر رہے ہیں, اور بھی تو اتنی اچھی باتیں ہیں. تو میں اپنے نا دماغ میں سوچ رہا ہوں کہ اچھا کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں رائٹ کے لوگوں کو سمجھاؤں کہ یار یہ اگر پوسٹرز کچھ ایسے ہیں کہ جس سے آپ اوفینڈ ہو رہے ہیں یا آپ ایک دم سے آؤٹ ریج ہو رہے ہیں, تو آپ ان کو اگنور کریں اور آپ اوور آل موومنٹ کو دیکھیں کہ وہ کتنی پاورفل ہے اور اس میں کتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ اس کو سپورٹ کریں. تو میں نے خیر سوچا, اور اگین آئی ول سرکل بیک ٹو مائی ارلیئر جب میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ میں نے ہیومنائز کیا ہوا تھا تو مجھے سمجھ آتی تھی کہ یار یہ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں یا کیوں ایک دم سے تھریٹنڈ فیل کر رہے ہیں. تو میری تھاٹ یہ تھی کہ میں ان کے نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایسے ان کو سمجھاؤں کہ ان کو سمجھ آ جائے. خیر میں نے ایک انسٹاگرام پہ پوسٹ ڈالی جو کہ میں نے اپنے حساب سے اس وقت سوچا, میں نے کہا یار کیا جینیس پوسٹ میں نے ڈالی ہے. میں نے پوسٹ یہ ڈالی, میں نے کہا یار چند ایلیٹسٹ خواتین کی وجہ سے پوری موومنٹ کو آپ ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے. اچھا اب اگین کیونکہ میں نے رائٹ کو کرنا ہے اور رائٹ جنرلی ریلیجیس اور کنزرویٹو ہوتی ہے, تو میں نے ان کو سمجھانا ہے, میں نے ان کو یہ سمجھانا ہے کہ یار کوئی بھی آئیڈیالوجی یا کوئی بھی موومنٹ یا کوئی بھی فلاسفی کو آپ کمپلیٹلی ڈس ریگارڈ نہیں کرتے, کیونکہ فرنجز ہمیشہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ان کو بڑے اچھے سے سمجھ آتا ہے ریلیجیس ایکسٹریمزم کی مثال دے کے, کیونکہ ریسنٹلی ریلیجن میں ایکسٹریمزم ایسا آیا جس کو یونینیمسلی سب ریجیکٹ کرتے ہیں. تو میں نے بولا یہ تھوڑی سی ایلیٹسٹ خواتین ہیں جن کی وجہ سے آپ سارے آؤٹ ریج کر رہے ہیں, حالانکہ موومنٹ بری نہیں ہے. جسٹ لائک القاعدہ ڈز ناٹ ریپرزینٹ آل مسلمس, سملرلی ا فرنج ڈز ناٹ ریپرزینٹ دی انٹائر موومنٹ. آپ اوور آل عورت مارچ کو ڈس ریگارڈ نہ کریں جسٹ بیکاز آف آؤٹ ریجنگ اوور اے فیو پوسٹرز. اچھا میں نے اپنے حساب سے, میں ابھی سوچ بھی نہیں رہا کہ لیفٹ کے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوگا, میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ یار یہ رائٹ والے شاید مجھے کچھ آ کے اٹیک کریں کہ یار آپ بھی چتو ہیں, آپ کیوں عورت مارچ کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن میں نے سوچا چلو یار میں ڈالوں گا اور دیکھتا ہوں, کچھ لوگ فلپ ہوتے ہیں. میں نے یہ ڈالی, میں نے فیس بک پہ بھی اسٹیٹس ڈالا, پتہ نہیں میں نے ٹویٹر پہ ڈالا یا نہیں ڈالا, میں نے اپنے انسٹاگرام پہ بھی ڈال دیا, ٹویٹر پہ میں نے نہیں ڈالا تھا, انسٹاگرام پہ میں نے ڈالا. اور میں پوسٹ جیسے ہی میں نے کیا نا, تو پہلے پانچ منٹ میں مجھے تین چار لوگوں کے کامنٹس آئے کہ ہاں ہم تو صبح سے بڑے اینٹی عورت مارچ ہوئے ہیں, بٹ تھینک یو, دس از اے ویری انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلور مور اباؤٹ عورت مارچ. میں بڑا خوش, میں نے کہا یار جاب ویل ڈن. لوگوں کا پوائنٹ آخر میں یہی ہے کہ یار لوگوں کا مائنڈ فلپ کرو اور ان کو اپنی طرف الائے کرو, ان کو اپنی طرف لے کر آؤ اور ان سے ایک لیجیٹیمیٹ رائٹس موومنٹ کی سپورٹ لو. خیر میں نے اپنا انسٹاگرام بند کیا, میں بڑا خوش, میں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے, میں نے فائنلی بڑے سارے رائٹ کے لوگوں کو فلپ کر دیا ہے. آدھے پونے گھنٹے بعد میں دیکھا مجھے ٹویٹر کی ایک نوٹیفیکیشن آئی, ٹویٹر کی نوٹیفیکیشن میں نے کھولی, اس پہ ٹویٹ آیا ہوا سید مزمل حسن زیدی تھنکس دیٹ پتہ نہیں ویمن آر القاعدہ اینڈ ہی کمپیئرز دیم ٹو القاعدہ اینڈ ہی تھنکس ویمن آر ٹیررسٹ. میں تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کہ اس طرح سے اس کو کنسٹرو کیا جائے گا. اور اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا اگلے چار گھنٹے, مینگو باس پہ آرٹیکلز آ رہے ہیں اوپر نیچے لیفٹ رائٹ, مجھے بڑے بڑے جرنلسٹ کینسل کر رہے ہیں, ٹیررسٹ یہ تو ہے ہی, کنزرویٹو, سائیکوپیتھ, پتہ نہیں کیا, کچھ سیکسسٹ, شوونسٹ, میری بیگم کو میسیجز آ رہے ہیں کہ اس کو ڈیورس کرو, یہ تو ہے ہی پتہ نہیں کیا. اور میں سرک ہو جا رہا کہ یار مطلب اگین میں سوچ رہا ہوں کہ پرابلم رائٹ ہے, کنزرویٹیوز ہیں, مجھے ان کو فلپ کرنا ہے, اور اٹیک مجھے میرے اپنے الائز کر رہے ہیں جو کہ پتہ نہیں کس ایموشنل سم تھنگ میں تھے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آل ویمن نیڈ ٹو بی اسپیکنگ آؤٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ. اچھا کیپنگ ان مائنڈ کہ اس میری وہ بات کرنے کے سال ڈیڑھ سال بعد انٹرسیکشنل فیمنزم بھی آ گیا, اور یہ بھی بات آ گئی کہ کلاس ڈفرنس ہوتا ہے اور یو نو پریولیج کے لیولز ہوتے ہیں. تو جو میری بات تھی کہ یار لاہور کی ایلیٹسٹ ڈی ایچ اے کی خواتین کی پریولیج بہت زیادہ ہے, وہ اگر آؤٹ ریج مٹیریل بنا کر کے آؤٹ ریج کریٹ کر رہے ہیں ورسز بلوچستان کے آئی وی خواتین جو کہ تمیز سے اچھی بات کر رہی ہیں, تو وہ غلط کر رہی ہیں ڈی ایچ اے والی, کیونکہ وہ ان کو جو اٹینشن مل سکتی تھی اچھی, وہ اس اٹینشن کو اپنی طرف لے کر آ رہی ہیں بائی جسٹ پٹنگ آؤٹ آؤٹ ریج مٹیریل, وین یو کین ایکچولی ہیو مچ مور میچور क्वालिटी कॉन्वर्जेशंस. बट खैर, मे बी मैं एक इमोशनल सोसाइटी में बहुत लॉजिकल हो गया था, मे बी मैं 2-1 साल पहले था इस एनालिसिस में या इस क्रिटिक में. क्रिटिक थी भी नहीं, सबसे मज़ेदार बात ये. और खैर, वो मैं पूरा उसके बाद कैंसिल हुआ. और आज तक मुझे ये औरत मार्च वाला क्राउड फॉलो करता है कि यार तुम तो हो ही ऐसे. उन्होंने डब्बा बना लिया, उन्होंने बस कर लिया कि ये तो है ही बुरा. क्यों? क्योंकि अगेन, एक्सट्रीमिस्ट फ्रिंजेस मोर ऑफन देन नॉट डू नॉट फॉलो लॉजिक, दे फॉलो आइडियोलॉजी. व्हेन यू फॉलो ब्लाइंडली एन आइडियोलॉजी, तो ऑल लॉजिक गोज डाउन द ड्रेन. स्पेशली दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान में आउटरेज को इस्तेमाल करके आप जेंडर के बारे में लोगों को नहीं सिखा सकते. आप थप्पड़ मार के किसी को नहीं सिखा सकते, क्योंकि थप्पड़ मार के आप सिर्फ उसको डिफेंसिव करते हो. आप सिर्फ उसको जो है ना पीछे हटा देते हो. आपने अगर उसको समझाना है तो आपने उसको प्यार से समझाना है. मैं आपको ऑनेस्ट रिकॉर्ड बताता हूँ, खवातीन को 2 मिनट साइड पर रखें, जितने मर्द आते हैं ना और आके फेमिनिस्ट बनते हैं, वो बचपन में सारे के सारे सेक्सिस्ट थे, क्योंकि ये मुआशरा इनहेरेंटली सेक्सिस्ट था. और सिर्फ ये मुआशरा इनहेरेंटली सेक्सिस्ट नहीं था, पूरी दुनिया इनहेरेंटली सेक्सिस्ट थी. अमेरिका तो हमसे बहुत पीछे था, मतलब हम तो बहुत फिर भी आगे थे. अगर ये जो वेस्ट को देखते हैं और वेस्ट कितना बड़ा किंग था, तो वेस्ट तो हमसे बहुत ही पीछे था, बट पूरी दुनिया में सेक्सिज्म का मसला था. बट ये इस वजह से कन्फ्यूजिंग है बिकॉज 90s में जिस शाहरुख खान को तमाम खवातीन ने ग्लोरीफाई किया और कहा कि वाओ कितना ज़बरदस्त शाहरुख खान है, और लड़कों को ये समझाया कि यार शाहरुख खान जैसे बनो, वो शाहरुख खान मैंने तो उसकी फिल्में देखी हैं पुरानी, वो जितना वो हरास करता फिरता था लड़कियों को कि वो नो कर रही हैं, वो ट्रेनों में उनके साथ फिर रहा है और पीछा कर रहा है उनका, तो जाहिर है लड़कों के दिमाग में अजीबोगरीब थॉट बनी हुई है. आपने उसको रीवायर करना है. आपने ये नहीं करना कि उसको पूरी ज़िंदगी एक फ्रेमवर्क दिया और अब आप उस पूरे फ्रेमवर्क को फ्लिप कर रहे हो और आप कह रहे हो यार तुम्हारी गलती है. अगेन, बहुत बड़े लोग हैं सोसाइटी के अंदर, बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं. मैं नहीं कह रहा उनसे प्यार से बात करें, उनको सजाएं भी दें, उनको सारा कुछ करें, बट मैं जनरल डिस्कोर्स की बात कर रहा हूँ कि आप अग्रेशन के ऊपर सपोर्ट नहीं बिल्ड कर सकते. हाँ, आप एक्टिविज्म कर सकते हैं, आप अपना दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, आप सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक मूवमेंट रन कर रहे हैं ना, तो आपने उसके अंदर लीडरशिप भी दिखानी है, आपने उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ भी दिखाना है, आपने उसमें सोल्यूशंस निकालने हैं. आपने उसमें ये नहीं करना कि यार मैं जितना ज़्यादा शोर क्रिएट कर सकता हूँ कर लूँ, बेशक उससे आउटकम जनरेट हो या ना हो. भाई मैं तो आउटकम ओरिएंटेड हूँ ना, लॉजिक डिक्टेट्स के यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्लिप करने हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छाई की तरफ लेकर आने हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफ्टी, सिक्योरिटी, टॉलरेंस की तरफ लेकर आने हैं, तो मैं उसी फ्रेमवर्क में उसको ऑपरेट करूँगा. खैर, इस इंसिडेंट के बाद जो मैं थोड़ा बहुत, अगर मैं सेंटर लेफ्ट पर था तो मैं मजीद वापस सेंटर पर आ चुका था, क्योंकि मुझे रियलाइजेशन हो गई थी कि इस साइड के ऊपर भी रैशनल थॉट अब रह नहीं गई, अब वाइब्स और इमोशंस ही रह गए. और राइट को और कंजर्वेटिव्स को आप कम से कम एटलीस्ट इस बात का बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं कि यार ना उनके पास एजुकेशन थी, ना उनके पास वसाइल थे, ना उनके पास एक्सपोजर था. वो अगर एक्सट्रीमिस्ट फ्रिंज पे जाते हैं और वो रैशनल कॉन्वर्जेशन या रैशनल डिस्कोर्स को रिजेक्ट करते हैं, तो उनका तो फिर भी आप कह सकते हो अंडरस्टैंडेबल है. बट सर, आपके पास तो एजुकेशन भी थी, आपके पास तो पैसा भी था, आपके पास तो एक्सपोजर भी था, आपके पास प्रिविलेज थी, ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है. आप किस बेसिस पे जाके अपने से नीचे लोगों को बेइज्जत करते हैं? आप कैसे उनको बुरा भला कहते हैं? आप कैसे उनको ऑस्ट्रासाइज करते हैं? और मज़ार बात यह कि लैंग्वेज सारी वो वाली इस्तेमाल करेंगे कि अपनी प्रिविलेज देखो और सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में ऐसे होता है और वैसे होता है और इस फिलोसोफर ने वो बोला और उस फिलोसोफर ने वो बोला. बट सर, आप थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस तो लेकर आए ना अपने अंदर कि आप लोग क्या कर रहे हैं. मतलब आप अपनी प्रिविलेज किस हद तक अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं. बहुत सारी लाइफ में थीम्स होती हैं, थिंग्स आर नॉट ब्लैक एंड वाइट. एंड सो जब आप कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जाते हैं, तो आपको अपने अंदर भी थोड़ी सी ह्यूमिलिटी लानी चाहिए, थोड़ा सा ठहराव लाना चाहिए, जो कि मुझे उस टाइम पे इनकी तरफ से लैकिंग लगा. और इन अ वाइडर पर्सपेक्टिव, जिसके ऊपर मैं पूरी एक सेपरेट वीडियो करूँगा कि किस तरीके से हमारे बहुत सारे एजुकेटेड लेफ्ट विंग लोगों को पता भी नहीं है कि किस तरीके से वो एसेंशली लेफ्ट विंग नहीं है, वो बेसिकली वेस्टर्नाइज्ड हैं. ऑल दे रियली वॉन्ट इज ए वेस्टर्नाइज्ड वे ऑफ लाइफ, अ वेस्टर्नाइज्ड सिस्टम जिसमें वो रहना चाहते हैं, जो कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा हो. लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सर, अगर इफ दैट्स व्हाट यू वांट, अगेन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. आई एम नॉट ऑन द राइट सेइंग दैट आप काफिर हैं या आप बुरे हैं जो आप ये चीज़ चाह रहे हैं. दैट्स परफेक्टली ओके. अ ह्यूमन बीइंग कैन चूज टू लिव इन दैट सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड सेक्युलरिज्म एंड यू नो ऑल ऑफ द इज़म्स. प्रॉब्लम इज कि आप पाकिस्तान को अपने रंग में क्यों रंगना चाह रहे हैं? पाकिस्तान की मेजोरिटी एक डिफरेंट चीज़ चाह रही है. आपको अगर एक डिफरेंट चीज़ चाहिए, तो पहले सेल्फ अवेयरनेस लेकर आएं. पहले ये रियलाइज करें कि ओ यू नो आई वांट समथिंग दैट पाकिस्तान डज नॉट हैव टू ऑफर, एंड पाकिस्तान डज नॉट हैव टू ऑफर बिकॉज पाकिस्तान इज यूनिक एंड पाकिस्तान हैज इट्स ओन फ्लेवर. एंड मे बी देन इंस्टेड ऑफ लुकिंग डाउन अपॉन पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तानी कल्चर एंड ट्राइंग सो हार्ड टू ट्विस्ट एंड टर्न एवरीबडीज स्टेटमेंट्स एंड एवरीबडीज फीलिंग्स, आप खुद अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें. बट नॉन द लेस, ये एवोल्यूशन का हिस्सा था और ये मार हमने खानी थी. उसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। 2020 में भी हमने मार खाई, 2022 में भी, 2021 में भी हमने मार खाई, मोस्ट रिसेंट जो हमने मार खाई, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अब बस हो गई है, लोगों की भी बस होना शुरू हो गई है, और यू नो दे डू नॉट वॉन्ट दिस सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट रेटरिक, दिस अस वर्सेस देम, दिस ब्लैक एंड वाइट। दे आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड कि देर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रे। और मैंने फिर रीच आउट करना शुरू किया टू अ लॉट ऑफ पीपल जो कि ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे थे। मुझे लोगों ने मना भी किया, लेकिन ये कि मैंने, क्योंकि मैं पॉडकास्ट का मेरा टोटल प्रेमिस ही ये था, खासकर जो 2020 में मैंने मार खाई थी वो एक लंबी कहानी है, किसी और दिन आपको फिर से सुनाऊंगा, लेकिन ये कि उस वक्त जब मैंने मार खाई थी तो उसके फौरन बाद मैंने कहा यार यू नो व्हाट, आई वांट अ स्पेस फॉर डिस्कोर्स, आई वांट अ स्पेस वेयर कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन कॉन्वर्सेशंस हो सकें, विच इज़ व्हाई आई स्टार्टेड थॉट बिहाइंड थिंग्स इन द पॉडकास्ट। तो वो जब 2.5 साल करने के बाद मुझे हुआ कि यार मैंने पहले बहुत अवॉइड किया कि मैं ना फ्रिंजेस की डिस्कशन ना करूं, मैं सेंटर को स्पेस दूं, बट मैंने देखा कि फ्रिंज ग्रो से ग्रो होता जा रहा है, राइट पे आपके पास बहुत सारे यू नो इन्फ्लुएंसर्स इमर्ज कर रहे हैं जो कि अगेन एक सॉर्ट ऑफ एग्रेसिव रेटरिक लेकर आ रहे हैं, और वो रेटरिक इस्तेमाल करके जो राइट के लोग जो मार खाए हुए हैं वो उनको इकट्ठा कर रहे हैं, और इसी तरीके से लेफ्ट पे आपके बहुत सारे लोग इमर्ज किए हुए हैं जो कि अपने साइलो में ऑपरेट कर रहे हैं। सो मैंने सोचा कि मैं रीच आउट करता हूँ वन ऑफ दोज। उस पर मैंने सैयद मुजम्मिल शाह साहब से भी पॉडकास्ट की नवंबर 2021 में, बड़ी अच्छी पॉडकास्ट हुई, हमारा एक बड़ा अच्छा तबादला ख्याल हुआ। इसी तरीके से फिर मैंने तैमूर रहमान साहब से भी पॉडकास्ट की, और मैं यू नो पहले मैं लेफ्ट पे जा रहा था बिकॉज आई थॉट के यू नो दीज आर द पीपल जो के जिनसे मैं ज़्यादा कनेक्ट कर सकता हूँ, सो आई कैन हैव अ मोर रैशनल कॉन्वर्जेशन विद दैम, क्योंकि राइट का थोड़ा ना स्केरी होता है, आप रिलीजन डिस्कस करते हैं उस पर अगर आप किसी चीज़ पर डिसएग्री कर लें तो यू नो यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। सैयद मुजम्मिल और तैमूर रहमान साहब से मेरी बड़ी अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई। फिर मैंने सोचा कि मैं शहजाद गयास को बुलाता हूँ अपनी पॉडकास्ट पर। अच्छा मैं तो बुला नहीं सका, मैं कराची जा रहा था, उन्होंने कहा कि यार आप आ जाए मेरी पॉडकास्ट पे। मैंने कहा यार मैं बड़ा थका हुआ था, मैं फ्लाई इन किया था, हमने एक इवेंट किया था, उसके बाद मैंने सोचा कि यार रेस्ट करता हूँ, लेकिन यू नो ही सेड अ कपल ऑफ टाइम्स आ जाओ खैर है इजी है चलेंगे ये वो। मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं, कितना ही मुश्किल है। मैं चला गया उस पॉडकास्ट के ऊपर, पूरे पाकिस्तान ने वो देखा, वो क्लिप भी उसका वायरल हुआ उस पॉडकास्ट के ऊपर। मैं ऑनेस्ट टू गॉड ऐसे गया था कि यार यू नो व्हाट, लेट्स क्रिएट ए ब्रिज, लेट्स हैव ए कॉन्वर्जेशन, बट देन शहजाद भाई को कुछ और मूड था उनका, और उन्होंने जो है ना फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, फ्रॉम द गेट गो, यू नो औरत मार्च पे तुमने ये बोला और उस पर तुमने वो बोला, और मुझे आज तक फॉर द लाइफ ऑफ मी, जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला ना कि मुझे नहीं समझ आई कि मुझे क्यों मिसकंस्ट्रू किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेरे से मसला है, मुझे तो समझ भी नहीं आया आज तक कि एग्जैक्टली मसला है क्यों। लाइक शहजाद गयास को मेरे से मसला था क्या? क्या पॉलिटिकल मसला था? मतलब क्या मैंने, क्योंकि मैंने पब्लिकली बोल दिया था कि मैं पीटीआई को वोट दे चुका हूं, या मैंने इमरान खान की पॉडकास्ट कर दी थी तो वो वाला मसला था? भाई एटलीस्ट शहजाद भाई मैंने तो ओपनली बोल दिया कि मैं पीटीआई को वोट करता हूं, आप तो वो भी नहीं बोलते ना, आप बोल दें कि आप पीपल्स पार्टी को वोट करते हैं लेकिन आप उसके दरमियान में विगल अराउंड करते हैं। मेरा मसला थोड़ा सा उस पर ये भी आ जाता है ना कि यार आप कम अज़ कम ऑनेस्टी के साथ करें, जो भी आप कर रहे हैं आप ऑनेस्टी के साथ करें, आप दरमियान में खेलने वाले ना बने, आप जो हैं वो बता दें। तो उन्होंने उसके ऊपर एक के बाद एक बराज ऑफ अटैक्स किए, बट चलो अटैक्स किए, मैं भी बैठा, आई स्टूड माई ग्राउंड, मैंने जिन जिन चीज़ों पे मुझे लगता था कि यार मुझे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए मैंने एक्सप्लेन किया, जिन चीज़ों पे मुझे था कि यार मैं अपोलोजाइज कर देता हूँ तो मैंने अपोलोजाइज कर दिया, वो पॉडकास्ट हो गई। उसके बाद देन शहजाद वेंट टुक अ क्लिप आउट, सवाल उसने मेरे से किया कि तुम एलीट थे, एलीट के ऊपर मैंने बोला कि मेरे पास करोला थी, एलीट के पास करोला नहीं होती, एलीट पैदाइश पैदा होता है तो अमरीका जाता है, मैं पैदा होते ही अमरीका नहीं गया, मैं अपर मिडिल क्लास था, मैंने उस पॉडकास्ट में ये बात एक्सप्लेन की। मिडिल क्लास जब आप बोलते हो तो आप वैसे भी उसमें तीन वो आते हैं, अपर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास। शहजाद भाई ने क्लिप निकाला, क्लिप निकाल के उसको टाइटल दिया इज मुजम्मिल मिडिल क्लास, जाहिर है कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाता है, ऑब्वियसली आई एम नॉट मिडिल क्लास, आई हैव नेवर क्लेम टू बी मिडिल क्लास, बट इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी थी ना, दो नंबरी थी जो कि आपने उस टाइम के ऊपर वो की। तो वो फिर वो हुआ, पूरे पाकिस्तान ने मुश्तरका, आज तक मुझे लोग आई कहते हैं आप वही मिडिल क्लास वाले हैं, मेरी कोई इंस्टा पे चीज़ थोड़ी सी भी वायरल हो जाए, कोई रैंडम बंदा आएगा वो कहेगा यार आप वो मिडिल क्लास वाले हैं। वहाँ पे भी मुझे हुआ कि यार पढ़ा लिखा आदमी है भाई, तू लम से ग्रेजुएट किया है, फुल ब्राइट से पढ़कर आया है, अजीब अजीब बातें कर रहा है ना, मतलब आगे मुझे कह रहा है कि तो आपने पीटीआई गवर्नमेंट के साथ, आपने फेडरल गवर्नमेंट में काम किया तो आप पीटीआई के हो गए हो बिकॉज पता नहीं क्या। तो भाई शहजाद भाई आप क्या यूएस के स्पाई हो, या आप यूएस की फंडिंग पे चलते हो क्योंकि आपने फुल ब्राइट पे स्कॉलरशिप ली है? मतलब लॉजिक और रैशनैलिटी से बिल्कुल बरक्स, एंड दैट सॉर्ट ऑफ पार्टिजनशिप जो मुझे एक्सट्रीम फ्रिंजेस पे नज़र आई ना, उसकी वजह से पहले तो मुझे हुआ कि होता क्या है कि जब आपको फ्रिंज से मार पड़ती है ना तो बड़ा आसान होता है, तो आप पोलर ऑपोजिट पे जाके बैठ जाओ, मतलब अगर आपको लेफ्ट से मार पड़ रही है तो आप राइट से जाओ और जाके, आपने इस तरह के बड़े देखे होंगे, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा या बंदी है उसको अगर लेफ्ट ने कैंसिल करना शुरू कर दिया तो वो पहला काम करेगा वो जाएगा जाके यू नो इस्लाम को लेकर आएगा और वो कहेगा ये सारे खूनी लिबरल्स हैं ही बुरे। तो वो जो है ना अस वर्सेस देम बना के अपनी पावर एग्जर्ट करने की कोशिश करेगा और अपनी बैक बनाएगा। तो पहले तो मुझे हुआ, मैंने कहा यार यू नो व्हाट, मे बी आई शुड रिस्पॉन्ड टू दिस, क्योंकि ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मुझे आके लोग गालियां दे रहे हैं, यू नो कैंसिल कर रहे हैं और मैसेज कैंसिल कर रही हैं। मतलब अगेन, जिस कॉम को मैंने ह्यूमनाइज किया, जिसको मैंने अंडरस्टैंड किया, जिसको मैंने जाके एलिटिस्ट से फड्डा लिया कि यार नहीं, आपको इनको एजुकेट करना चाहिए है, आपको इनसे प्यार से बात करनी चाहिए, उस कॉम ने आके मुश्तरका कैंसिल जब किया ना, तो तब वाकई दिल टूटा, वाकई दिल टूटा। एक गलत बात पे किया, सही बात पे करते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट गलत बात पे किया, और उनकी गलती भी नहीं थी, उनको जाहिर है जो दिखाया गया वो दिखाया गया। सो दैट इंसिडेंट ऑल्सो लेफ्ट अ ह्यूज मार्क ऑन मी, एंड अगेन इनिशियली आई थॉट कि यू नो मे बी आई शुड गो एंड डिफेंड माई सेल्फ, बट रैशनल थिंकिंग का तकाजा अगेन यही है, लॉजिक का तकाजा यही है कि अगर कोई फ्रिंज पे है ना, तो क्योंकि रैशनैलिटी आपको ये बताती है कि फ्रिंज ज़्यादा से चलती नहीं है। आप अगर पार्टिजान हो भी जाओ, या आपका अगर टनल विजन है और आपको बस वही नज़र आ रहा है, तो इससे आप किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे इन द लॉन्गर रन, आप सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और चूंकि मेरा मानना ये है कि यू नो ओवरऑल पब्लिक बकरियां नहीं हैं, वो शीप नहीं हैं, आप उनको आज बेवकूफ़ बना लेंगे, आप उनको अगले हफ्ते बेवकूफ़ बना लेंगे, बट इन द लॉन्गर रन जिस तरह मैंने इवॉल्व किया है वैसे ही उन्होंने भी इवॉल्व करना है। इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन हर इंसान ने इवेंचुअली डिफरेंट डिफरेंट फ्रिंजेस से होते हुए सेंटर पे आना है। सो मैं थोड़ा सा यू नो पुल बैक हुआ, जाहिर है बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स थे, दिस वाज अ मेजर हार्ट ब्रेक एज वेल, क्योंकि उस टाइम के ऊपर मुझे याद है कि उस हफ्ते में सिर्फ शहजाद गयास ने ये नहीं किया, इरफान जुनेजो अपनी स्टोरी पे गया और उसने जाके, अगेन इरफान को मेरे से क्या मसला है आज तक मुझे नहीं पता, ऑनेस्ट टू गॉड मुझे नहीं पता इरफान को मेरे से प्रॉब्लम है क्या, बट इरफान ने जो है वो अपनी स्टोरी पे जाके डाल दिया कि जी मुजम्मिल मेरा नाम लिए बगैर के एक पॉडकास्टर हैं, वो अपने आप को बड़ा समझते हैं और वो जो है ना उनको लगता है कि उनको सब आता है। मुझे तो नहीं पता कि मुझे सब आता है मैंने कब क्लेम किया कि मुझे सब आता है, मतलब अपनी इनसिक्योरिटी है तो उसके ऊपर आप वाइब्स पे खेल रहे हो। नंदलेस उन्होंने आके उसके ऊपर एक पूरी स्टोरी डाल दी, फिर लोगों ने आके उस पर बोलना शुरू कर दिया, उस पर इरफान भाई ने बोला कि जी मुजम्मिल ने इतना एरोगेंट है कि इसकी टीम ने मुझे पॉडकास्ट के लिए कॉन्टैक्ट किया, मतलब विच वॉज अगेन फैसिनेटिंग बिकॉज प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है कि एक प्रोसेस होता है और जब आपकी गेस्ट कोऑर्डिनेशन हो रही होती है और आपने एक बंदा हायर किया होता है तो वही बंदा रीच आउट करता है। बट इरफान भाई को ये बुरा लगा कि टीम ने क्यों कॉन्टैक्ट किया, तो उसमें एरोगेंस पता नहीं मेरी थी या एरोगेंस किसी और की थी जो जिसको बुरा लगा कि एक रैंडम यू नो टीम मेंबर ने क्यों कॉन्टैक्ट किया, बड़े आदमी ने क्यों किया, बट नंदलेस अगेन आई डोंट नो पॉइंट बीइंग कि ये वन आफ्टर दे जब ये सारी चीज़ें हुई ना, तो उसके बाद मैंने बहुत इवेल्यूएट किया, मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत स्टडी किया कि अच्छा पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है, जो यू नो कैंप्स बन रहे हैं, जो एक पोलराइजेशन की एक फर्दर लहर आ रही है, क्या मुझे उसका हिस्सा बनना है, क्या मुझे व्यूज़ की दौड़ में या पब्लिक सपोर्ट की दौड़ में, या यू नो अगर मुझे मैं राइट से पहले लेफ्ट पे गया तो क्या मुझे लेफ्ट से फुल राइट पे जाना है, या मुझे कोई ज़्यादा लॉन्ग टर्म अप्रोच लेनी है, और मुझे यू नो बेशक शॉर्ट टर्म पे वो कहते हैं ना लूज़ द बैटल विन द वॉर, तो क्या शायद मुझे कुछ बैटल्स में हार तस्लीम कर लेनी चाहिए और ओवरऑल बिगर पिक्चर पे फोकस करना चाहिए। क्या मैंने इवेंचुअली किया वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। ऑलरेडी इस एपिसोड में मैंने बड़े सारे लोगों के नाम भी ले लिए हैं और बड़े सारे इंसिडेंट्स को खोल भी दिया है। अगेन मैंने आई डोंट मीन टू रिडिक्यूल एनीवन, आई डोंट मीन टू कंप्लेन अबाउट एनीवन, आई डू अंडरस्टैंड कि एवरीबॉडी कम्स फ्रॉम अ सर्टेन सेट ऑफ एक्सपीरियंस। शहजाद भाई को अपने लाइफ के कोई एक्सपीरियंसेस होंगे जिसकी वजह से वो जो है वो इस तरह से उन्होंने मेरे साथ रिएक्ट किया, उस तरह से उन्होंने साहिल अदीम के साथ रिएक्ट किया, काफ़ी सारे लोगों के साथ वो करते हैं। मेरी जनरली बस यही होता है कि मैं उनको अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं उनको ह्यूमनाइज भी करता हूँ, मैं उनसे एग्री नहीं करता क्योंकि उनका जो तर्ज है वो पर्सनली आई थिंक दैट्स वेरी एरोगेंट, बिकॉज जैसे इरफान भाई को लगा कि हम बहुत एरोगेंट हैं, हमें लगता है हमें सब पता है, हमें नहीं पता, वाकई नहीं पता, वरना हम अपने गेस्ट्स के साथ इसी तरीके से गुस्से में आके जो है ना इम्पोज कर रहे होते हैं अपने ओपिनियंस, तो हम तो सुनने के लिए बैठते हैं। लेकिन ये कि अगेन यू नो इट्स ऑलवेज कम्स फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस एंड सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रॉमा, एंड आई गेट दैट, आई डोंट ब्लेम द पीपल जो औरत मार्च वाले उस टाइम के ऊपर थे जिन्होंने मुझे अटैक किया। मैं बिल्कुल भी नहीं समझ सकता कि उन लोगों की लाइफ में क्या ऐसी ट्रामाज हुए होंगे, क्या ऐसी हरासमेंट्स हुई होंगी जिसकी वजह से मेरी बात उनको टोन डेफ लगी। मेरी बात में कोई गलती नहीं थी, लेकिन उनका रिएक्शन भी यू नो हो सकता है कि वारंटेड हो, बेशक वो गलत हो लेकिन वो वारंटेड हो सकता है। सो आई डू अंडरस्टैंड एंड सिमिलरली द रेस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स एज वेल, बट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बड़ा मुश्किल था मेरे लिए तमाम चीज़ों के बारे में बात करना, पुरानी चीज़ों को उठाना, अलॉट ऑफ दीज इंसिडेंट्स वर फेयरली ट्रोमैटिक व्हेन दे हैपेंड, बट you know, lots of learning experience, and they've built me as a better person, I believe, in terms of my framework and in terms of my worldview. And I just wanted to, at least, even if koi sun nahi raha, even if is point pe jis time pe main ye bol raha hu, to aap mein se koi is waqt sun nahi raha, main sirf shayad ek camera se baat kar raha hu, lekin mere liye bada zaruri tha ki main at least ye interweb ke upar out dal dun ki yaar ye mera background hai. इन इंसिडेंट्स के बाद इस तरह मैं इवॉल्व किया हूँ. मैं कोई एक किसी डब्बे में नहीं डाला जा सकता. मैं अगर कोई भी ओपिनियन रख रहा हूँ तो वो मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेज एंड मल्टीपल डिफरेंट आइडियोलॉजीज को एनालाइज करने के बाद मैं एक अपना ओपिनियन बना रहा हूँ, और वो समवेयर इन द सेंटर है, और वो गलत भी हो सकता है, एंड दैट्स फाइन. लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हैविंग रॉन्ग ओपिनियंस, एज लॉन्ग एज डिस्कोर्स जारी रहे, एज लॉन्ग एज आप हेट प्रमोट नहीं कर रहे. अगर मेरे ओपिनियंस जो हैं वो किसी दूसरे को नीचा करके आ रहे हैं, अगर मेरे जो ओपिनियंस हैं वो ये कह रहे हैं कि यार तुम उसको सुनोगे तो तुम जो है ना ब्रेन वॉश हो जाओगे, हमें इस तरह के चैनल्स बंद करने चाहिए, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहता. मैं कहता हूँ कि यार देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई डिसएग्री विद, बट अ लॉट ऑफ देम आर डूइंग गुड वर्क. मैं जनरली बहुत एग्रेसिवली डिसएग्री करता हूँ विद शहजाद गयास, विद सैयद मुजम्मिल, विद तैमूर रहमान ऑन सम लेवल, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे प्रोवाइड दैट डिस्कोर्स सो दैट पीपल कैन लिसन टू दैट एज वेल. एंड देन जो राइट पे यूथ क्लब है, या कैसर अहमद राजा साहब हैं, या और बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं बहुत सारी बातों से अगेन बहुत चीज़ों पे डिसएग्री करता हूँ, और बहुत एग्रेसिवली मैं उतना ही डिसएग्री करता हूँ. मतलब मेरे लिए ना, जब हम यूथ क्लब की बात करते हैं, जब हम कैसर अहमद राजा की बात करते हैं, जब हम शहजाद गयास की बात करते हैं, जब हम सैयद मुजम्मिल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल्स के लिए मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, और उनके देयर राइट टू देयर एक्सप्रेशन के लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है, बट मैं इक्वल डिसएग्रीमेंट करता हूँ दोनों से, क्योंकि दोनों फ्रिंजेस पे खेल रहे हैं. दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि वो डेंजरस है और वो डेंजरस है. मेरे हिसाब से ये दोनों डेंजरस नहीं है, क्योंकि मैं जब मैं अपने पास्ट को झांक के देखता हूँ तो मैंने तो हर किस्म की चीज़ कंज्यूम की. मैंने राइट के मटेरियल को भी कंज्यूम किया और मैं राइट की तरफ चला गया, फिर मैंने लेफ्ट के मटेरियल को कंज्यूम किया, फिर मैं लेफ्ट की तरफ चला गया. इवेंचुअली जो रैशनल इंसान है वो कहीं ना कहीं दरमियान का रास्ता ढूंढेगा, और वो दरमियान का रास्ता सिर्फ तब आ सकता है जब आपको हर किस्म के फ्रिंजेस की आवाज़ आ रही हो और आप ओरिजिनल थॉट के तहत एक अपनी आइडियोलॉजी और अपना एक इंडिविजुअलिस्टिक ओपिनियन बनाएं. एंड सो दैट्स वेयर आई एम एट. इसको मैं फर्दर इलैबोरेट करूंगा इन द नेक्स्ट एपिसोड. रात के 5 बज रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको रैपअप करूंगा. अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस. और अगर आपकी कोई थॉट्स हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा. बड़ी ये अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसमें मैंने बड़े सारे नाम शाम ले लिए हैं बड़े डरते डरते, तो बराह करम इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना देखिएगा. ये मैंने किसी दूसरे के बारे में नहीं ज़्यादा बोला, मैं ज़्यादा जो है वो अपनी रिफ्लेक्शंस बता रहा था, अपनी थॉट्स बता रहा था. आई होप दैट इट डजंट रिफ्लेक्ट पुअरली ऑन एनीवन एल्स, एंड इफ इट डज आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट. बट एनीवेज, यहाँ पर मैं इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ. फ्राइडे को मेरी एपिसोड आएगी क्वेश्चन एंड आंसर्स की. यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ रहा है thoughtbehindthings@gmail.com. यू कैन सेंड me your question on that email and I will answer as many as I can on the Friday episode. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hasan Zaidi. You're watching Dil Ki Baat. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.